बहार है खत्म होने, शहनशाह के महल सारे लुटे और उनकी दौलत भी, शहनशाह के महल सारे लुटे और उनकी दौलत भी, बना है दुश्मन जांगो भी जो था पासवां अपना, उठालो बुलबुलो अब तुम
रयाकारी कपटी आगे और पीछे है। परमात्मा को हाजिर नाजर समझो, घट में बैठा था और वो सबके घट में, किसी को बुरा चित्र नहीं करो, किसी की निंदा चुगली बुराई नहीं करो, नियमता धारण करो, जबान मीठी रखो, गाली गलौज से बाहर आओ, नियमता ही से प्रभु मिलता हो और ख्याल आपको फिटर हो। ये तीन बड़े भारी सबक हमारे जीवन के जीवन से जिसकी आदियात में बैठे हैं, ये हमारे सामने, ये सब के लिए और खासकर जो सेवादार हैं उनके लिए और निहायत ज्यादा जरूरी है। अपने जीवन की पड़ताल रखो, डरो नहीं, डायरी रखो, जीवन को ठीक करो। लाइलमी में कई कमजोरी होती है, वो मालूम नहीं होती, ऐसी गाली गलौज निंदा तक के खराब बन जाता है, दूसरे का बुरा चित्रण करना, निंदा करनी, बुरा सोचना, आखिर ये हमने छोड़ना है और जाना है, और जो हजूर के नाम लेवा है उनके चरणों से, उनकी दया से जो नए भाइयों को भी फायद मिल रहा है, सबके लिए ये चीज लाभ दी, सच को धारण करो, ख्याल आपको पितर रखो और जबान मीठी निंदा भरी, सब के अंतर वही है, गनीमत समझे इतने भाई हजूर की याद से इकट्ठे हुए, इसलिए उनकी कृपा कितने भाई इकट्ठे हुए, इसलिए प्यार से हर एक की सेवा करो, आदर मान रखो, किसी को छोटा नहीं समझो, सब के अंतर वही है, यही भगवान चलते फिरते सच्ची बात है। और इसके साथ जो बाहर से भाग महात्मा बेटी से होता है और महापुरुष आते हैं वो नूर के बच्चे आते हैं, वो रोशनी मुझे सब होते जब आते हैं तो सारी दुनिया को रोशनी देगा, वो रोशनी हम में भी है, मगर हमारी रोशनी जैसे एक लोह का संदूक खोलो उसमें बंद, उनके वो संदूक बंद से आजादी हो गई, तो उनका काम क्या है, जब भी आते हैं लोगों को रोशनी देते हैं। क्राइस्ट ने कहा आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं दुनिया का नूर हूं, जो मेरे पास आएंगे दे विल नॉट वॉक इन डार्कनेस, जो मेरे पास आएंगे वो अंधेरे में नहीं, किसी महापुरुष की क्यों पहचान बाहरी अगर तो हो सकती है कि यही कि वो आपको कुछ लोग की जो कुछ संकल में से पूरी कर उतने मन को सोचा भगवाया हम क्या करोगे जो खाते चलो, लेकिन कथा ज्ञान बाल की रचनाज इनके तो कैसे बनाने चाहिए, पूजा कैसे करनी चाहिए, नमाज कैसे पढ़नी चाहिए, ये वो ये कोई भाई सिखा सकता, लेकिन कथा ज्ञान भी कभी देने के बाद कोई कर सकता, और ये जो ज्योति का दान देना है ना, ये किसी पूर्ण पुष्प वही काम है जो अत्यंत लोग और जाते हैं। आज ऐसे पूर्ण पुरुष की यादगार में बैठे हो, वो हमारे अनुरूप है। उनके पास जो भी आता है मैं ये कहूंगा कि जो पुरुष पुष्ट नहीं जाते हैं उनको दूर मिलता। आगे जब वो इस वृत्ति वाली दे रहे थे तो भी मिलता था, अब भी उनकी बरकत कहां पर है। आप बहियों को ज्यादातर जिनको ये ज्योति का दान मिल चुका है इसको बढ़ाना है। आज उन महापुरुषों की याद में बैठना है, कैसे सब तब से ख्याल कर थोड़ी देर के लिए छुट्टी का तो दुनिया है ही नहीं। घरों बारों को, बाल बच्चों को, रुपए पैसे जायदादों को थोड़ी देर अर्पण कर लो। और इससे आगे अपने जिस्म का भी ख्याल पूछना, तो बाहर तो कैसे ख्याल रहेगा, ना देखो ना ख्याल ले आके बंद करो। बाहर सुनने को कैसे हटोगे, वो ध्यान जब कान की इंद्री के साथ लगता है ना तो तब सुनाई देता है, बाहर अगर सोच कहीं और निकाल हो तो सुनाई नहीं देगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, सब भाई और बहने गौर से समझे, बरकत मिलेगी, जरूर जा करेंगे। तो ये सहज मार्ग है, ग्रहण योग नहीं, हट योग नहीं, ये भक्ति रूपी जमीन में अनुभव की बात है। तो किसी आसन पर बैठ जाओ जिस पर आप जाए आराम से बैठो, अकड़ कर नहीं बैठो, अकड़ कर नहीं बैठो, नरम बैठो, सीधे बैठो। एक बार जो आसन तैयार कर लो बद्र में, पहली बार आंखें बंद करके बाहर दुनिया का ख्याल छोड़ दो, और कुछ नीचे शरीर में क्या होता है उस पर ध्यान नहीं लो। अभी हो रहा है ना जिसमें क्या हो रहा है आपको कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, सांस भी चल रहा है, गला भी हजम हो रही है, खून भी दौरा मार रहा है, मगर पता नहीं ये नीचे होता है, होने दो, बाहर का ध्यान भी छोड़ दो। रूप का ठिकाना आंखों के पीछे है, मरते आदमी यही रोशन कराती है आंखें फिर जाती हूँ। तो बाहर का ख्याल छोड़ दो, नीचे का ख्याल छोड़ दो, चलने का ख्याल भी छोड़ दो। आप क्या कहा आंख बंद करो तो अंधेरा हो जाता है, कोई चीज अंतर से अंधेरे को देख रही है वो है अंतर्नियम, उसको शिव नेत्र कहते हैं, थर्ड आई सिंगल आई डिप्टी शुगर फिगर। तो अंतर्नियम से अंतला अंधेरा जो दो घरू मत सामने पूरी तेजो लगाकर देखो, जैसे बच्चा देखता नहीं एक ऐसे गौर से देखेंगे और गौर से देखेंगे और गौर से देखेंगे, जैसे बारीक चीज को पूरा ध्यान देते हैं, यहां तक कि बाहर का ख्याल न रहे शरीर का न रहे। अर्जुन था उनको धरे की तारीफ दी जा रही थी, तो एक दस के ऊपर एक बंदा बैठा था, तो अर्जुन को कहा भाई देखो क्या मिल जाता है, कहते जी दस मिल जाता है, कहते और गौर से देख, कहते अंशाफे नजर आती है दस की, कहते और गौर से देख, कहते अब पिंडा बैठे हुए नजर आता, कहते और गौर से देख उसकी आंख कहाँ है, और गौर से देखते देखते बाहर भूला, दस्त भूला, शाखे भूली, पिंडा भूला, तो एक आंख रह गई उसकी। एक समझाने का टीका, अम्मा आती है तीर मारा आंख में लगा, बात समझे, बाहर से ख्याल को छोड़ो, जिस्म का ख्याल छोड़ो, चढ़ने का, मुंह का, सिर का, हड्डी का, चमड़े का ख्याल छोड़ दो, सामने अंधेरा जो नजर आता बड़े गौर से पूरी तवज्जो लगा कर दे, बस आपका और कुछ काम नहीं। यही तक देखते रहो, सुमन या जप जो महापुरुषों ने दिया है पूर्व पुरुषों का जाप करना है जबान से नहीं, कंठ से नहीं, हृदय से नहीं, विचार से कहो, सोच से कहो, मेंटली कहो, ऐसा करता कि ध्यान ना थे, बस आपका सिर्फ काम इतना, आंख बन जाओ चल। जब एक ही जगह टिकाने होगा वो नूरा जी, आपने बनाना नहीं, पैदा नहीं करना। जब वो आज उसके बीच में ध्यान को वहां प्रकाश होगा, इस दाइनाई भी सिंगल दाई होल बॉडी सेल भी फुल ऑफ लाइट, जब तुम्हारी एक आंख बन जाए तुम्हारा नूर बन जाए। नूर आ जाए उसके बीच में ध्यान का ऊपर फटेगा, आगे सिलसिला चल पड़ेगा, स्लू वगैरह ये वो। बात समझ आ गई आपको? अब बैठ जाओ, देखो क्या है, फैल रहे बात। अगर मिट्टी बाहर से आते हम मंत्र मुख आ जाए, वो सामने हाजिर नहीं उठा, परमात्मा का मिलना मुश्किल नहीं, इंसान का बनना मुश्किल है। इकबाल शायर ने ये कहा था कि हजरत मूसा खुदा के नूर को देखने के लिए कोई दूर पर गए, क्या उसको ये पता नहीं था कि इंसान खुदा हमदर्द तलाशी आदमी है। परमात्मा आप तलाश कर रहा है कोई इंसान में नहीं। इंसान कौन है? जिसकी सुख काबू में, हम इंसान नहीं। हमारी सुख फैली हुई है, बाहर की इंद्री हमको बाहर खींच रही है दिन रात, इतने जबरदस्त बाहर खींचे जा रहे हैं कि अपने आप को भी होश नहीं। एक आदमी हो कि बाजू से घसीटे, कोई लात से घसीटे, कोई कान से घसीटे, कोई नाक से पकड़ कर घसीटे, उस आदमी की होश कहां जाए। तो इंसान नाम है आत्मनिर्धारी का, आत्मा चेतन स्वरूप है और कॉन्शियसनेस है, मगर मन के साथ लगकर इसके लिए खींच रही। एक मकान हो, उसकी कुछ नौकर या नौकरानी हो, और नौकरानी अगर आज्ञाकार न हो, अगर मालिक को सीटें फिरे, कोई लात से, कोई कान से, कोई नाक से, कोई आंख से, तो उसका क्या हश्र होगा? उसको अपने आप के होश नहीं होगी। तो पहली जरूरत किस बात की है? इस घर को अपने आप को काबू में लाने की जरूरत। ये जो घर है ना, जिसम रूपी मकान जिसमें हम रह रहे हैं, ये एक वंडरफुल हाउस, अजीबो गरीब मकान है जिसमें हम रहते हैं। हम भी नहीं रह रहे, हम हमारे साथ हमारा जीवन आधार जिसको हमने पाना है वो भी बच रहा। नहीं तो इसके कई सुराख हैं, आंखों के, कानों के, नाश्ता के, मुंह के, गुदा के, इंद्री, ये बाहर भाग जाए, भाग नहीं सकता है, कंट्रोल्ड है। सांस बाहर जाता है, बार रह नहीं सकता, कोई ताकत इसको बार बार वापस ला रही है। कोई ताकत इसको बार बार वापस ला रही है, वो ताकत वापस जो ला रही है वो उसको परमात्मा कहते हैं, कंट्रोलिंग पावर उसको नाम कहते हैं। नानक नावे के सब कुछ वश है, पूरे भाग को है, क्योंकि हमारी सोच खींची जा रही है बाहर इंद्रियों के घाट पर। कभी आम की इंद्री खींच कर ले जाती है अच्छा स्वरूप, अच्छी सीनरी देखकर, कभी कान की इंद्री अच्छा अच्छा राग सुनकर, कभी नाश्ता की, कभी कोई इतना बेहाली में जा रही है कि इसको अपनी होश टिकाने में, इसके होश कैसे आए जब ये इंद्रियां जो इसको खींची फिर रही है, ये दमन हो, काबू में आए, कंट्रोल हो। उसको कंट्रोल में लाने के लिए पहला काम है इंद्रिय दमन हो। इंद्रिय खड़ी हो तब भी मन खड़ा हो सकता है। इंद्रिय दमन हो, मन खड़ा हो और बुद्धि भी स्थिर हो। ये जो सोचती है विचारती तमीन करती रहती चीज है, ये है ये है ये नहीं है, ये भी स्थिर हो तब आपका साक्षात तब अपने आप ही हो जाए। तो वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कई मेरा विहार कहे कबीर तब पाइये जो भेजी दीजिए साथ। चीज कहीं और हो हम उसको तलाश कहीं और करें वो कैसे मिलेगी। गुरु जी उन भागों से मिला है इसका दर्जा परमात्मा के बाद दूसरे दर्जे पर है। देवी देवते भी इसको पाने के लिए तरस रहे हैं। जिस दही को सिमरे देव सो दही पज हर की से, जिस गुरुष्टन को फरिश्ते भी सजदा करते हैं कुरान शरीफ के मुताबिक, अरे वो हमको मिली है इस रद के लिए कि हमारी सुध फिर उस प्रभु की गोद में चली जाए। मंदिरों के घाट पर ये बाहर फैलाव में खिंची फिर रही। तो पहला काम हमने जो करना होगा वो सुध को काबू में लाना, सुध मंत बनना होगा। सुध पहले बाहर से हटे। ये शरीर जिसमें हम बस रहे हैं इसमें हमारा परमात्मा प्रभु भी बस रहा। एका संगत एकत ग्रह बसते मिल बात न करते भाई। एक ही संगत में एक ही घर में दो भाई रह रहे हैं, एक आत्मा एक परमात्मा। आत्मा मंदिर के घाट पर बाहर भटक रही है, इसलिए वो जीवन आधार इसकी अंतर में है मगर इससे बात नहीं कर सकते। तो हमें करना क्या होगा, अपनी शुद्ध फैली को पहले बाहर से ये सारी मंदिर के अंदर लाना होगा जो हम लिए फिर रहे हैं। सारे महापुरुष कहते हैं कि शरीर जो हम लिए फिर रहे हैं यही हरि का मंदिर है। बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड, नहीं शरीर हरि मंदिर है जिस सच्ची की ज्योत। ये हरि का मंदिर है जिस उस प्रभु की ज्योति जगमगा रही है। हम उसको नहीं देख सकते क्यों, ये हमारी आत्मा है। हम तो है ज्योति स्वरूप, जीवन आधार हमारा महान ज्योति स्वरूप है, मगर ये ज्योति जैसे एक आयरन कास्केट हो, लोहे का संदूक हो उसमें मत। और इसके लिए हमारी सोच जो बाहर फैलाव में जा रही है ना, वो पैर की फैलाव की अटैचमेंट जो है वो लोहे का सुदूक बना पड़ा, उसके लिए बाहरी अटैचमेंट से हटना पड़ेगा। तो बाहर से हटना जो विषय विकारों या इंद्रियों के भोगों रसों में लंपट है वो कैसे बाहर से हट सकता है। पहली बात, कल रात यहां बारिश हो रही थी, अंदर की राह बरस रही थी और बारिश में सत्संग हो रहा था, तो उसमें आपको बताया गया था कि हमारी सोच हमें जीव कैसे बसर करना चाहिए, कैसे ये बाहर से हट सकती है, उसके लिए क्या कुछ करना होगा। तो बाहर ये अटैचमेंट हटने के लिए जीव को सिंपल और सादा बनाना पड़ेगा, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। जितनी ख्वाहिशात कम होगी उतनी ही कम बाहर की जावट होगी। संयम का जीवन हो पहली बार, गुजारे मात्र बर्तो इनमें ही। तो जितना भी बाहर से फैलाव कम होगा उतना ही ये लोहे की जो चदर लगी पड़ी है ना ये पतली होती जाएगी, पतली होती होती वो ज्योति इसमें आ गई है जगमगा उठेगी। हमारी सोच जन्म जन्म से बाहर फैलाव में जा रही है, बाहर का रूप बन रही है, इसलिए हमें मुश्किल मालूम होता, मगर हमारी सोच में बड़ी भारी ताकत। मैंने शुरू में अर्ज किया था कि परमात्मा ज्योति स्वरूप है, हमारी आत्मा भी ज्योति स्वरूप है, सिर्फ ये बाहर फैलाव के कारण اس کو پا نہیں سکتی. باہر سے ہٹو تو وہ آگے ہی موجود ہے. دس اندرے جو راکب آش تاکہ آتما ہوئے پردار, جو دس اندریوں کو بس میں کر لے, کیا جو اندریاں کھینچ رہی ہیں یہ اس کو باہر جانے سے کنٹرول کر لے, تو یہاں سے انتر پرکاش وہ آگے موجود ہے, ہم نے بنانا نہیں. You shut the doors of the temple of your body, you see the light of heaven. تو مہاپرش جب آتے ہیں وہ جیوتی سروپ ہوتے ہیں. ہماری سوتے بھی جیوتی سروپ ہے, مگر لوہے کے کاسکٹ میں بند ہے. سوت کے بعد پھیلاؤ کی اٹیچمنٹ کے کارن اس لیے ہم اس کو پا نہیں سکتے. تو یہاں ضرور کس بات کی ہے کہ ایسی سوت ونت ہستی سے ملاپ ہو, سوت ونت جس کی سوت کنٹرول میں ہے, اور سوت کنٹرول میں آ کر ماؤتھ پیس مہان سوت کی بنی ہو. ایسے پش کی صحبت میں اس میں یہ سمرتھا ہے کہ تھوڑی توجہ دے کر جن کی سوتی دبی پڑی ہے باہر پھیلاؤ میں, وہ باہر سے ہٹ کر پہلے شنی مندر میں, پھر ہری مندر کے اندر کو گھاٹ کو چھوڑ کر اوپر آ کر اس جوتی کا انوبھو کر سکتے. وہاں پر وہ ایسی ہستی باہر بھی گائڈ کرتی ہے, اور جب باہر سے انتر آؤ تو وہاں بھی سامنے آ کھڑے ہو. توجہ بنا کر میں نے اس کا کیا کہنا ہے کہ ویژولائز کرنے کی ضرورت نہیں, بالکل جب انتر آؤ گے سمرت خوشی ایک اپنا بنانا ہے, ایک اپنے آپ کا آنا ہے. خدا وہی ہے جو اپنے آپ ہے. تو گرو کی دو پوزیشن ہوتی ہیں, ایک باہری ایک انتری. باہری تو وہ پڑھنے کا کام کرتی ہے, بچوں کی طرح پڑھاتی ہے. استاد بچوں کو پڑھاتا ہے, کہتے کاؤ الف کاؤ بے, اس کا یہ مطلب کہ الف بے نہیں جانتا ہے. صرف بچے کو پڑھانے کے لیے اس لیول پر آنا پڑتا ہے. وہ ہمدردی بھی کرتا ہے, بعض وہ دو آنسو بھی بہاتا ہے. اسی طرح شدھ فیلی کو باہر سے اٹھا کر اپنے آپ کی طرف متوجہ کرتا ہے. یہ باہر کا کام ہے. پھر اندر سے وہ کیونکہ دور ہے, دور ہی دور کے ساتھ جوڑ سکتا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا, کرائسٹ نے کہا تھا, آئی ایم دی لائٹ آف دی ورلڈ, دوز ہو کم ٹو می شیل نیور واک ان ڈارکنس. کسی مہاپرش کا کام یہ ہے کہ جب آپ اس سے ملو, وہ تم کو بٹھائے, تھوڑی پونجی دے, تو ہٹ کر جیوتی کی تھوڑی انتر وکاش ہونا. یہی ایک نشانی ہے کسی سمت خوش کی. باہر کے میں نے عرض کیا تھا, رسم رواج, تیرتھ یاترا, چین چکروں کا بنانا اور لیکچر تتھا بیان کرنا, یہ کوئی بھائی بھی کر سکتا ہے, مگر سٹ کو باہر کے پھیلاؤ سے ہٹا کر ہندو کے گھر سے اوپر لا کر انتر اس کا تھوڑی پونجی کا دینا, یہ کسی سمرت خوش کی کہانی ہے. تو مہاپرش کیا کرتے ہیں, آپ کے باہری جسموں کو نہیں دیکھتے, باہری آپ کے چین چکروں پر بھی نظر نہیں مارتے. وہ کیا دیکھتے ہیں, پہلی بات وہ ہم کو مانوتا کے لیول سے دیکھتے ہیں کہ ہم سب انسان ہیں. پہلے انسان, پیچھے ہندو سکھ مسلمان عیسائی اور جین, یہ ہمارے اسکولوں کے باہری لیول ہیں جو ہم نے لگائے ہیں. اس لیے ان میں داخل ہو کر ہم نے اسی سائنس کو جاننا تھا, اس کو پانا تھا, انت اس کی جوتی سروپ کا انوبھو کرنا تھا, جو آگے ہم میں موجود تھی, مگر ہم باہر پھیلاؤ کے کارن اس کو پا نہیں سکتے. اس کے لیے ایسی ہستی کی کیوں ضرورت ہے, اس کا کارن کہ ہماری سوت من کے حدین ہو کر اندروں کے گھاٹ پر جسم کا جگت کا روح بنی بیٹھی ہے, اور جنموں جنموں کے سنسکار ہمارے اندر بھرے پڑے. جو آگے اندروں کا گھاٹ کا روح بنا بیٹھا ہو, سادھن وہ کرے जिनका तलक इंद्रियों के घाट से है। अरे भाई वो इंद्रियों के घाट से ऊपर कैसे आ सकते, बड़ी बात। जिसका जीवन गंदा है, इंद्रियों के भोगों रसों में रंगा पड़ा है, बाहर लंपट हो रहा है, अरे भाई वो इस तरफ कैसे जा सकता। बात समझी, हमारी गति एक ऐसे मिसाल तो बहुत बंदी है, मगर समझने की खातर एक गद्दा हो, गद्दा कीचड़ में फंस रहा हो, ऊपर बोझ भी लगा पड़ा हो, वो अपने आप कैसे निकल सकता। उसके लिए यही किसी जाति की हमारी हालत पर रहम आ जाए, पहले हमारे बोझ को कुछ हल्का करे, फिर खेचे सदगुरु बलवान। ये समर्था हम सब में है, हम सब में है। मैन इज इन द मेक, इंसान बन रहा, जन्मों जन्मों से बन रहा। जो बन जाता है वो दूसरों को बनाने में मददगार हो जाता है। तो ऐसे पुरुष जब भी आते हैं, हमारे ऊपर जन्मों जन्मों के संस्कारों का बोझ लगा पड़ा, पहली बात। अब उसको कुछ थोड़ा हल्का करें, फिर हमारी सुख थैली को बाहर लाकर थोड़ी देर अंतर्मुख पेरियों के घाट के ऊपर लगाए, लगाओ सुख अलख स्थान पर जांग को रटत महेशा। अपनी सुख को वहां लगाओ, हाँ जो अलख है, हिंदू के घाट से नहीं लिखा जा सकता, जहाँ पश्चिम भगवान भी ताड़ी लगाए बैठे, इसलिए कहाँ खत्म होती है, ये सब इंडिया नीचे रह गए। शिव नेत्र कहाँ बनाते हैं, माथे पर। अगर सोच वही आ सकेगी जो बाहर टाइट नहीं होगी, इंद्र के घर से ऊपर कोई समर्थ पुरुष की तवज्जो में ताकत है कि हमारी फैली सोच को टिकाव में लाए, बाहर से अंतर लाए, मेरे के घर से ऊपर अंतर की आंख खोले, थोड़ी पूंजी दे। आज उस पूर्ण पुरुष की याद में हम बैठे हैं, थोड़ी देर के लिए आप सब भाई बैठे हैं। वो महापुरुष ये भी समझता है बाघ योग देश में 72 में भी आकर खड़ा हो जाए, बगैर किसी विजुअलाइजेशन के, प्री मेडिटेशन के, आपके सामने है। आज ही हमेशा होता है, हर रोज होता है, जो उनकी बरकत काम कर रही है, बख्शीश है। कोई भाई भी उसको पाना चाहे, सिर्फ कतना इतनी है, साईदा की पावना इंद्रो पटना के उदर बार त्रिका बयान का है, थोड़े लफ्जों में भी और ज्यादा लफ्जों में भी। अरे भाई ये चीज आपके अंतर मौजूद है, मगर वो पास होते हुए नजदीक से नजदीक, होते हुए दूर से दूर है। मछली पानी में रहकर पूछती है पानी कहाँ है, हालांकि पानी उसका जीवन आधार है, वो पानी से कभी जुदा नहीं हुई, दिन रात वी हैव और बीइंग इन हिम। फिर फैलाव के कारण हम अपने आप से बेसुध और बेखबर हैं, जब तक हमारी सुध बाहर फैलाव से हटती नहीं, अंतर्मुख आती नहीं, इंद्रियों का घाट छोड़ती नहीं, उसको देख सकते हैं। बात सिर्फ यहाँ समाजों का, कौमों का, मजहबों का कोई सवाल नहीं। जब भी महापुरुष आते हैं वो क्या देखते हैं, दस गुरु साहब ने कहा, कहू भयो मुंडिया सन्यासी, कहू जोगी भयो और कहू ब्रह्मचारी, कहू जति अनुमान भव। अब बाहरी भेखों का जिक्र कर रहे हैं, तो कोई तो मुंडिया कहते सिर्फ परमहंस बन गए, कोई सन्यास धारण कर गए, घर बार छोड़ा जंगलों की राह रही, कोई योगी धारण बने, कोई ब्रह्मचारी बन गए, कोई जति बन गए, हिंदू तुर्क कहू राफी इमाम साफी, सबका जिक्र कर रहे हैं। महापुरुष बड़ा आजाद होकर देखता है कि दुनिया क्या कर रही, कोई हिंदू कहलाता है, कोई तुर्क, कोई राफी, कोई इमामी, کوئی صافی، ایک ایک مذہب کے کئی سب سیکٹس بن چکے، سکھ بھائیوں میں، ہندوؤں میں، مسلمانوں میں، عیسائیوں میں بھی، تو اتنے سب سیکٹس کے چین چکر ہم نے دھارن کیے ہیں، اور ویسے ہم کہلاتے ہیں مانس کی جات سب ایک ہے، پہچان مانس جاتی سب ایک ہے، پہلے لوگ مانو، پھر ہندو، پھر مسلمان، پھر سکھ، پھر عیسائی، پھر جین، یہ وہ. آپ نے دیکھا نظریہ مہاپرشوں کا کیا ہوتا، وہ ہم کو باہری چین چکروں کے، باہری لیبلوں کے جو ہم نے دھارن کیے ہیں اس نظر سے نہیں دیکھتے، وہ ہم کو پہلے اگر دیکھتے ہیں تو مانوتا کے لحاظ سے دیکھتے ہیں، مین فرسٹ، پھر اس کے بعد جس اسکول میں داخل ہوگا ویسے کہہ رہا ہے. اور یہاں بھی پھر ایک اور بات بھی کہتے ہیں کہ یہ معلوم بھی ہے مگر اس میں کوئی اور طاقت بھی کام کر رہی ہے جو اس کو کنٹرول کر رہی ہے، اس جسم کو چلا رہی ہے، نہ تو جب اس کے رہنے والا اس سے نکل جائے، اور جو اس طاقت اس کو اس جسم میں کنٹرول کر رہی ہے وہ ہٹ جائے، چار بھائی اٹھا کر شمشان میں پہنچا دیتے ہیں، آگ بھی جلا دیتے ہیں، زمین کے نیچے دبا دیتے ہیں، اور اس کے آگے اور چلنا. اس حقیقت کو پانے کے لیے جو ہمارا جیون آدھار ہے، اس کو پانے کے لیے پہلے یہ انسان آتما دیہداری ہے، ایمباڈیڈ سول، اور آگے قدم چلنا ہوگا. پھر اس کے آگے ایمباڈیڈ سول کو جان بھی لے تو اور قدم کون کنٹرول کر رہا. دس ٹیچر وسے سہیلڑی ٹیچر ساتھی ناؤ، جان ساتھی اٹھی چلیا تان تنخواہ کراؤ. اس وقت تک جس کی سہیلی آواز ہے، جب تک اس کا ساتھی اس کے ساتھ ہے، جب اس کا ساتھی اس سے جدا ہوگا اسے کون پوچھے. جسم کی شوبھا ہم سے ہے اور ہم اس کے ساتھ قائم ہیں کسی اور طاقت کے آدھار پر، جب وہ ہٹتی ہے ہمیں جسم چھوڑنا پڑتا ہے. وہی طاقت کھنڈوں برمنڈوں کو دیے کھڑی ہے، جب وہ طاقت وہاں سے ہٹتی ہے تو پرلے اور مہا پرلے ہو جاتا ہے. اس کو جاننا وہ ہمارا جیون آدھار ہے، اسی کا یہ سب پسارا. تو منوجین پا کر ہم مختلف سماج میں داخل ہوئے، اس کو پوجنے کے لیے کہو، پانے کے لیے کہو. تو آگے کہتے ہیں کرتا ہو کریم سوہی، کوئی اس کو کریم کہتا ہے، کوئی کرتا کہتا ہے. راز کو رحیم سوہی، کوئی اس کو راز کہتا ہے، کوئی کہتا ہے بڑا رحم دل ہے. دوسروں نہ بھید کوئی، کوئی بھن بھید نہیں، وہ ایک ہی ذات حق ایک ہے، دو نہیں، ٹوتھ از ون ناٹ ٹو. سمجھے؟ تو سینکڑوں عاشق ہیں دل آرام سب کا ایک ہے، مذہب و ملت جنا ہے کام سب کا ایک. کسی سماج میں رہو، یا تو تم مانو ہو پہلے، پھر آتما دیہداری ہو، پھر تمہارا جیون آدھار تم میں بس رہا ہے، جس کو پانے کے لیے آپ کو یہ منوجیون ملا ہے، وہ سب کا آدرش ہے. رجب نشانہ ایک ہے، تین انداز ایک. جس نے اس نشانے کو پا لیا، کہتے دوسروں نہ بھید بھول بھرم مان بو، اس بھول سے نکل جاؤ. اور سارے مہاپرش یہی کہتے ہیں. مولانا روم صاحب کہتے ہیں یک حقیقت جل بگر در کفر و اسلام استعمال، ایک حقیقت سب میں کام کر رہی ہے، خواہ اس کو مانتا ہے یا نہیں مانتا. اختلافات مذاہب جملہ اب ہم سو بس، مذہبوں کے اختلاف شخصی وہم کا نتیجہ. ایک آدمی اٹھا، انہیں کہا میرا یہ ویو پوائنٹ ہے، اس کے ساتھ ہزار دو ہزار دس ہزار آدمی لگ گئے، ایک مذہب بن گیا کلٹ میں. اصل بات کیا تھی؟ حقیقت سے دوری تھی. پھر کیا ہوا نتیجہ؟ آج تصوف کا سے شیخ و برہم چندرا تعصب اور تنگدلی کے سبب سے وہ کہتے ہیں میرا ویو پوائنٹ ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں میرا ٹھیک ہے. بات اصل میں کیا ہے کہ مانوتا ایک اس کا دیر ہری ہے, آتما ہے ہم سب, اور اس کا جیون آدھار ہے. اس کو پانے کے لیے مختلف اسکولوں میں داخل ہوئے تھے, اسکولوں کے پجاری بن گئے, حقیقت کو بھول گئے, نتیجہ کشف ہو گئے. ورنہ در میں خانہ یک ساتھی ہے یک جامع سر, نہیں تو اس میں خانے میں ایک ہی پلانے والی کو سوت مت ہستی جو بہت پیچھا گارڈ بنی ہے, اور وہی نشا دینے والا بس وہ سب کے لیے ایک ہے. جس کو نام کہو, کلمہ کہو, شبد کہو, ادگیت کہو, ناد کہو, اس میں دو ہی سورتیں ہیں, ایک جیوتی کا وکاس, ایک اکھنڈ کی دھنی. تو اس لیے ایک ہی کی سیو سب ہی کے گرودیو ایک, ہم سب ایک کے پجاری ہیں, سب کا گرودیو ایک ہی ہے. یہاں لفظ گرودیو بنتا ہے, ایک گرو ایک گرودیو, ریڈیڈ فارم آف دی ماسٹر, جیوتی سروپ. جب منندوں کے گھاٹ سے اوپر آؤ آگے بھی گائیڈ کر سکے. گرو کا کام یہ نہیں کہ باہر لکیر بازی دے کے کنارے ہو, اس کے دو کام, پانی کی طرح سمجھانا, پھیلی سوٹ کو باہر سے انتر میں لانا, اندوں کے گھاٹ سے کھینچ کر اوپر آنکھ کھولنا اور جیوتی سروپ سے, اور وہاں بھی گائیڈ کرنا اور یہاں بھی گائیڈ کرنا. آخر وہ ہے کون؟ وہ ست گرو یا برو گرو, وہ پریپورن پرماتما ہے. تو سچا گرو کون ہوا؟ بڑے لفظ مارک کرنے والے ہیں, سب ایک ہی کی سیو, سب ہی کو گردے ویک, ایک ہی شروع, سب ایک ہی جوت مار دو, وہ اسی ایک کا اظہار ہو رہا. یہ سوال کیا گیا وہاں پوچھوں سے وقتاً فوقت کہ گرو تمہارا کون ہے؟ گرو نانک صاحب سے سوال ہوا یہی کہ تمہارا گرو کون ہے؟ تو فرمانے لگے شبد گرو سرت تن چیلا, میری سرت جو ہے یہ چیلا ہے اس کی, اور وہ شبد وہ پرماتما شبد ہے یا نام ہے, جب اظہار میں آیا ہے اس کو کہتے شبد, شبد سے یہ سب کچھ بنا, اس کو نام کہتے ہیں, نام سے سب کچھ بنا, اس کو کلمہ کہتے ہیں, کلمے سے 14 تبک بنے, اس کو ناد کہتے ہیں, ناد سے 14 بہن بنے. جو نام شبد انٹو بینگ آیا اس کا نام گاڈ ان ایکشن پاور کو, وہی سب کا گرو ہے اور ہماری سوت اس کی چیلا. کبیر صاحب سے سوال یہی کیا گیا تھا کہ تمہارا گرو کون ہے؟ وہ فرمانے لگے گرو ہمارا گگن میں, یہ گگن جو جیون آ رہا ہے سب کا, چیلا ہے گھٹ میں, گھٹ میں ہم بس رہے, ہم چیلے. کہتے پھر کیوں کر ملنا بھیا, کیوں بچھ تاوے جا, کیسے تمہارا ملاپ ہوا, کیوں کر تمہاری دوریوں سے ہو گئی؟ تو کہنے لگے سوت شبد ملا بھیا بچھڑ کب ہوا, سوت جو پھیلاؤ میں جا رہی تھی اس کے ساتھ جڑ گئی, باہر سے آج کے رنتر مٹھینوں کا چوٹ پر اس کا ساتھ جڑ کر ایسا میل ہوا کہ اب بچھنے کا سوال ہی نہیں. ایسی سوت جو اس کی بڑی لمبی منزل ہے, یہ پہلے سور سے تھا, جو برہمنڈے سوئی پنڈے جو کھوجے سو پار, جو برہمنڈ ہے اس کے نمونے پر یہ جسم ہمیں ملے ہیں, ونڈرفل ہاؤس وی لیو ان. ایک یہ باہر کا کھول ہے, اس کے اندر ایک سوکشم کھول ہے, اس کے اندر ایک کارن کھول ہے. پہلے باہر کے آنا ہی انتر کی لوہے کی کاسکٹ ہے جس کے اوپر آنا ہے, اپنے آپ ہم آ نہیں سکتے, کوئی آ سکتا ہے تو خوشی کی بات, اندروں کے دو آنکھیں چاہیے, نہ آ سکے تو کسی کی مدد لے لے. ایسے علم جن کا تعلق اندیوں کے گھاٹ سے ہے وہاں تو ہم ایک دوسرے کی مدد اور گائیڈنس لے لیتے ہیں, اور ایسا علم جو اندیوں کے گھاٹ سے اوپر شروع ہوتا ہے کیا اس کے لیے کسی کی ضرورت نہیں, کسی پورن پشت نے کبھی نہیں کہا کہ میں گرو ہوں. وہ کہتا وہ گرو جو کہتے ہیں میں گرو ہوں وہ اس حیثیت کو سمجھا رہے ہیں. بھیک صاحب نے کہا بھیکھا بات اگم کی کہن سنن میں نہ ہے, جو جانے سو کہے نہ کہے سو جانے نہ, جو جانتے ہیں وہ کہتے نہیں, یہی کہتے وہ کر رہا ہے بیان نہیں, ध्यान में आ नहीं सकती। जो कहते हैं मैं जानता हूं वो नहीं जानता, अभी उसने जाना नहीं। तो ऐसी हस्ती का मिला बड़े भाग में है होता। पहली बात खेचे शुभ गुरु बलवान, जो हमारी फैली हुई सुध को कंट्रोल बाहर से हटाकर अंतर्मोहन तक से ऊपर आया तो नेचुरल वे वो देते हैं। इसके साथ बहुत है, मुश्किल भी है आसान भी है, प्राणों का संयम है, चक्रों को भेदना है, उसके लिए घर बार को छोड़ना है, जंगलों की राह लेनी है। वो जमाने बदल गए हैं, आज नहीं रहा। तो उन्होंने एक चीज पेश की, जय सोच त्यान सजा हो, बड़ा सिंपल है। मन को कौन ताकत देता है? सोच। इंद्रियों को कौन ताकत देती है? सोच। बाहर दुनिया के कब एहसास होता है जब हमारी सोच उसके साथ। आपने ये तो तजर्बा किया होगा कई बार, आप बैठे हो ख्याल में, मैं सोच सोच अटेंशन को कहते हैं। ये रूह का बाहर इजहार आउट ऑफ एक्सप्रेशन है। जब भी कहीं यही जगह लगी हो ख्याल, कोई आवाज देता है हम सुनते नहीं, कान खुले हैं क्यों नहीं सुनते हैं? इन कान की इंद्री के साथ हमारी अटेंशन है। कोई आता बैठकर पास से उठकर चला जाता है, पता नहीं कौन है। न्यूटन था, एक रोड साइड पर बैठा हुआ मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। एक बैंड बजता हुआ पास से गुजरा, पीछे लोगों ने आकर पूछा, क्यों भाई यहां से कोई बैंड गुजरा है? कहते नहीं, मुझे तो पता नहीं। तो बेसिक चीज क्या है? शुद्ध अटेंशन, हमारी होश, वेकफुलनेस जिसको हम महसूस करते हैं, उसको कंट्रोल करना है। किसने करना है? हमने। इसका जिक्र ग्रंथों पोथियों में मिलता है, और हम कैसे करें? जो आगे जिक्र पड़े मैंने मिसाल अर्थ की। तो आज भाई पुष्टि के नाम निशानी दी है, संतन मोह को पूंजी सौंपी। पूंजी देने वाले का नाम संत। संत कौन है? हमरो भत्ता बड़ो भव्य की आपे संत कहो, जिसके तुम वो प्रगट वहां में भी है। हमारी सोच बात फैलाव के कारण जिस उनका जगत का रूप बन रही है, जहां आशा था पासा बार बार दुनिया में भटक रही, कभी स्थूल में कभी सूक्ष्म में, कभी कान चक्कर काट रही है बार बार, कोई से परे गया हुआ पुरुष पहले हमें बाहर से हटाए, इस लोहे की कास्केट से ऊपर लाए, फिर सूक्ष्म हदायत के उदा कारण से ऊपर लाए, पिता पूते के रंग धीरे, तब आना जाना खत्म हो। तो ऐसी हस्तियों का नाम संत कहा जाता है, जिसको आगे कमीशन मिल जाए वो गुरु। एक आदमी हजारों लाखों को साथ ले जाता, जब ऐसे पुरुष दुनिया में आते हैं सैलाब आ जाया करता, समझे? तो वो ताकत उसको कहते हैं गुरु पावर, मास्टर पावर, क्राइस्ट पावर। वो जन्म मन में नहीं होती, जन्म मन दो में नहीं, जन पर उपकारी आए, जीय दाम दे भक्ति लाइन हर सो लाइन में आए। वो लाइफ इम्पल्स देते अपनी, वो लाइफ इम्पल्स देते अपनी, वो लाइट होते हैं ना, अपनी लाइट से लाइट दिला देते। तो मेरे अर्थ करने का मतलब आप समझे क्या हुआ कि महापुरुष दुनिया ऐसी हस्ती दुनिया में आती है, वो क्या कहती है, फिर और नजर मार कर बड़ा विशाल हिलना देती है। कहती है हमारा आदर्श मनुष्य जीवन पाकर प्रभु की प्राप्ति, इट इज आई टर्न टू मीट गॉड, तो बड़ा समा, ये तो समा मिला अति सुंदर। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं शीतल हो बच खाम से जल, कृष्ण की आग जला रही है फैलाव के कारण, सुत को बैठे हटाओ को होश में आओ, जलती आग से बच जाओ। ये जलती आग किसको नजर आती है? जिनकी आंख खुली, गुरु नानक साहब ने प्रार्थना की, जगत जनता रख लय प्रभाप कृपा धा। हे प्रभु, दुनिया में आग जल रही है, अपनी कृपा करके इसको बचा लो। जित द्वारे उबरे तिथि लो हुआ, जिस तरह भी तुम बचा सकते हो बता, किसी बहाने हीले बसी बोलो। जिन भागों से मिला है तो अब मैं नजरिया पेश कर रहा हूँ महापुरुषों का, कहाँ से कहाँ तक हम पहुंचे, असलियत हम में थी, कहाँ के कहाँ पहुंच गए। अब बाहरी जिस्मानी लेवल पर जो है, डेरा मसीद सोही और पूजा और नमाज वही। डेरे किस लिए बनाते हैं? प्रभु की याद के लिए। मस्जिद किस लिए बनाते हैं? उसकी याद के लिए। डेरों की शक्ल होती है गोल, माओ का ऐसे बनाते हैं। मस्जिद बनाते हैं माथे की शक्ल पर, असल यही डेरा और मसीद। बाहर नमूना बनाया था कि इसमें वो बस रखा। मंदिर भी गोल बनाते हैं सिर की शक्ल पर, गिरजे नाक की लबूती शक्ल के बनाते हैं। ये बात जो भी हमने धर्म स्थान बनाए हैं, इस धर्म स्थान का बाद नमूना मॉडल बनाया और उसमें क्या करते हैं, ज्योत जगाते हैं। डेरे पर भी ज्योत जगाते हैं, मस्जिद में दाएं तरफ ज्योत जगाते हैं, मंदिरों में ज्योत जगाते हैं, गिरजों में ज्योत जगाते हैं। अरे शरीर हरी मंदिर है जिसे सती की ज्योत कर रहे हैं। बाहर के डेरे और मसीद जिस गर्द के लिए बनाए गए थे, जिसको हम पूछते हैं नमाज और पूजा ये वो करते हैं, किस लिए करते हैं? सिर्फ एक ही चीज के पाते थे, मानव समय एक में अनेक को प्रभाव है, मानवता एक आदर्श एक, उसको पाने के लिए अनेक तरीके, यकसुई के लिए, ख्यालात को टिकाओ के लिए बाय नमूने बनाए थे कि ऐसा ये हरि मंदिर जिसमें जोड़ जग रहे। एक मकान बनता पहले उसका मॉडल बनाया जाता, मॉडल जब बन जाए, अब मकान बना नहीं मॉडल बना, जब मकान बन जाए फिर मॉडल से दिल उतर जाता है नहीं, वो फीका पड़ जाए। मैंने बड़ा अच्छा मॉडल मालूम होता है, इसमें इतने कमरे हैं, इसमें ये है वो है, जब मॉडल बन गया, मकान बन गया जिसका मॉडल था, मॉडल दिल से उतर जाता। लड़कियां हैं ब्याह शादी की रस्में सीखती हैं, गुड्डी गुड्डे बनाकर बड़ा शौक से, कभी लिली का ब्याह हम शादी करते हैं, टीके सीखने की हम ब्याह शादी लिली क्या चीज है, जब उनकी अपनी शादी हो जाती है गुड्डी गुड्डे कहा जाते हैं, समथिंग लाइक दैट। जो जाग उठते हैं मगर इसमें आखिर है क्या, ये किसके नमूने, ये सारी मंदिर के, और ये हरि मंदिर सबको प्रभु ने एक जैसे दिए, परमात्मा ने इंसान बनाया एक जैसे हकूक सबको दिए, पैदा उसी तरह से होते हैं सब, बाहरी बनावट सबकी एक जैसी है, अंदरूनी बनावट सबकी एक जैसी है, सबको बीमारी एक जैसी लग रही है, सबकी आत्मा मन के अधीन इंद्र के घाट पर जिस्म का और जगत का रूप बन रही। तो दस गुरु सर ने कहा, एक है नैन, एक है काम, एक के दे, एक है थाम, खाक बाद आतशो आप को रला, चार अंशों का ये जिसम। तो इंसान क्या हुआ भाई? सवाल किया गया था, महापुरुष हमेशा आके हमें अवेकन करते हैं, जब जब महापुरुष आते हैं यही तालीम देते रहे। गुरु नानक साहब आए, उन्होंने यही बातें पेश की जो अब आपके सामने रखी जा रही है। जो शरीयतों के कैदी थे, जो शरीयतों के कैदी थे वो कहने, अरे भाई अगर पूजा और नमाज एक ही है, कत्ता और करीम वही है, चलो नमाज पढ़ो। कह चलो भाई, चले गए मस्जिद में, नमाज पढ़ाई गई, मौलवी साहब पढ़ा रहे थे, काजी साहब भी साथ थे, लोग भी साथ थे, देखो जी नमाज पढ़ता है कि नहीं, हर एक ने अपने लेवल से देखना है ना। नमाज पढ़ी गई और नमाज गुरु नानक ने नहीं पढ़ी, सबकी नजर इस बात पर थी। पूछा, क्यों भाई नमाज तुमने क्यों नहीं पढ़ी? तो कहने लगे, भाई मैं किसके साथ पढ़ता? तो कहने, मौलवी साहब पढ़ा रहे थे। तो कहने लगे, मौलवी साहब तो इस फिक्र में थे, बुत यहां था, चित था घर में, कि कहीं बिछेरी कूड़े में न गिर जाए। काजी साहब ने कहा, जो होता है ना, हमारे साथ पढ़ देते, क्या तुम तो काबुल में घोड़े खरीद रहे थे। बात सच्ची थी। तो आकर कहने लगे, भाई तू सच कहो, तू कौन? ये जो महापुरुष जवाब देते हैं, यही लेवल से समझते हैं। वो कहने फरमाने लगे, हिंदू कहां ते मारी। अगर मैं कहता हूं तो मेरे चेचे कर हिंदू के हैं ना, ये स्कूलों के लेवल लगाए हैं भाई, तंगदिली और तस्व करके भाई भाई के प्यारे जुदा हो रहे हैं। है तो मानव जाति एक एक जैसी बनावट, एक तरह से पैदा होते हैं, हैं सब आत्मा देधारी, आत्मा की जात वही जो परमात्मा की जात, और सबको जीवन आधार वही है जिसके हम पुजारी। तो कहने लगे, मेरे चेत चकर हिंदू वाले हैं, मैं हिंदू कहता हूं तुम्हारी तंगदिली और तंग नजरिया तो मुझे मारोगे। तो जिसको तुम मुसलमानी खाली चेत चकरों की मान रहे हो, वैसा मुसलमान भी नहीं, लब का काटना जैसे उनकी पत्नी का। फिर कहते, फिर तुम कौन हो? कहते, मानुष मूर्त नानक ना हो, मानुष हूं मैं भाई, इसको लोग नानक कहते हैं। फिर और कुछ कहा, यही फिर कहा, पांच तत्व का पुतला गैबी खेले मां, पांच तत्वों का शरीर है वो गैब की ताकत जैसे वो मैं हूं। अब आप समझे क्या हो आप, हमें क्या बीमारी लगी पड़ी। तो सारे महापुरुषों ने यही कहा, अलख अभेद सोही, प्राणो कुरानो ही, एक ही स्वरूप, सबे एक ही बनाओ। अब आप समझे महापुरुष क्या तालीम देते, वो मानवता के लेवल से देखते। इसलिए क्योंकि सब मानव जाति हैं, उनको सब कौमे, सब मुल्क, सब मानव प्यारे, क्योंकि वो आखिर यूनिट्स मानव के बनेंगे। स्कूलों कॉलेजों के लेबल लगा है उसको पाने के लिए, गलत अन्य बनना है, परफेक्शन को पाना है, हकीकत को जानना है, और किससे जानना है, कैसे जानना है, ये सवाल है। तो इसलिए महापुरुष जब आते हैं, जैसे वो परमात्मा रबुल आलमीन है, ऐसे ही वो महापुरुष भी सब दुनिया के लिए आते हैं। महापुरुष साखी बोल दे, साजी सगल जहाने। क्या बोलते हैं, सुन संतन की साची साक्षी, सो बोले जो पेखिया, जो देख रहे हैं, देखते भी हैं, दिखा सकते भी हैं, दो काम। सन नोज दी फादर है, नदर सूम दी सन रिवील। ये सब दूर के बच्चे आते हैं, जब आते हैं आप देखते हैं, दूसरों को दिखा सकते हैं और उनको पूंजी देते हैं। वो ना मजमों को बनाते हैं, नहीं ना तोड़ते, हकीकत शनास हैं, लोगों को हकीकत की तरफ मतवजे करके उसका अनुभव देते हैं। आप समझे, हम भूलते रहते हैं, ऐसे महापुरुष गह गए आकर हमें फिर जगाते रहते। तो ऐसे पुरुषों का मिलाप बड़े भागों से होता है। ये मैंने थोड़ा सा व्यू पॉइंट जो अनुभवी पुरुषों का होता है वो पेश किया। उसका पहला काम क्या है, किसका काम, जो सत का स्वरूप हो चुका, जो का लीडर क्या है, सब हिंदू बन जाओ। मुसलमानों का लीडर क्या है, सब मुसलमान बन जाओ। सिखों के लीडर, सब सिख बन जाओ। मैं गुरु नानक साहब ने जो जवाब दिया मैंने आपको पेश किया। राजी पातशाह जी जो इस बात और बड़े जोरदार लफ्जों से कहा, मैं वो पेश करूंगा आपके सामने। जिस जल निध कारण तुम जगाए, सो अमृत गुर पाइए। जो हर एक किस्म की खुशी के जल के देने के लिए تم پانے کے لیے دنیا میں آئے ہو وہ گرو سے بھی. آگے کیا کہتے ہیں ذرا کان کھول کر سنو. چھوڑو ویس پیک چترائی ہی ڈبدا اے پھل نہیں. ویسوں پیکوں میں رہنا ایک برکت میں نے سوشل بھی نہیں ہوگی تو ایک اور سوسائٹی بنائے گا سمجھے. مگر کسی سماج میں رہ کر جس غرض کے لیے شامل ہوئی اس کو پاؤ کیا, اپنے آپ کو جانو, اپنے جیون آدھار کو جانو. جس نے اس راز زندگی کو حل کیا اس کی چرنوں میں بیٹھو. کسی سماج میں رہو تمہاری کلیان, اور ہر ایک سماج میں مہاپرش ہیں. روی داس کی جماعت تھے, میرا بھائی ان کے پاس گئے, راجا پیپا ان کے پاس یا آخرہار کا, کبیر صاحب جلاہے تھے, بغیر سنگھ راجے ان کے پاس گئے, تلسی صاحب برامن تھے, مرزا ٹکی وغیرہ ان کے پاس گئے. ارے بھائی یہاں ستری برہم شدھ ویشو کا سوال نہیں, جو انبھی بن گیا اس کی ذات ہے. کسی سماج میں رہتے ہوئے ایسا پوش وہ سب کے لیے, ہاں پیدا ضرور ایک اسکول میں ہوتا مگر اتنا وشال چل جاتا ہے کہ سارا جہان اس کے لیے. ہوائی جہاز میں چڑھ جاؤ, اوپر جاتے چلے جاؤ, ساری دنیا ایک ہو جاتی. تو آج جس مہاپرش کی یاد میں آپ بیٹھے ہو ان کا یہی مت, یہی تعلیم. جو دور سے دیکھتے تھے وہ سمجھتے تھے کیا کسی سماج کے قیدی, جو نزدیک سے آتے تھے وہ یہ دیکھتے کون دیکھ سکتے ہیں جن کو وہ آپ جنا ہے. سمجھے, جس کو آپ گرو کو کون جان سکتا ہے, جس کو گرو آپ جنایا, اتنا اتنا زیادہ نہیں, یہ اس کی بخشی. وہ ہوتا آخر کون ہے تھوڑے دوسروں میں, پرماتما کے ساتھ جوڑتا ہے نا, تو پرماتما کو کوئی ہے بھائی بندھو ماتا پتا کوئی دوست متر ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر کیا کہنا ہوگا. پرماتما ہی پرماتما کے ساتھ جوڑ سکتا ہے, اور پرماتما کہاں ہے سب کے اندر, گھٹ گھٹ میں ہر جو بسا ہے, سنتوں کی پکار گھٹ گھٹ میں بس رہا. جن گھٹوں سے وہ جیون ہرا رہے ہیں نا, وہ جس گھٹ میں وہ پرگٹ مینیفیسٹڈ گاڈ ان مین, جس کی سوت اس مینیفیسٹڈ گاڈ سے ماؤتھ پیس بن گئی, وہ مینیفیسٹڈ جو پرماتما ہے وہی دوسروں کی شدھ دبی کو اوپر لا کر اس کے ساتھ جوڑ دے کے سب کے گھر میں. بات سمجھائی, اس لیے کہا گر کو مانس جانتے جنم جنم ہے. ہمارے حضور سے ایک دفعہ سنگت بیٹھی تھی, بہت جنم اتسو کا دن تھا, لوگوں نے اب کی مہاراج آپ پرماتما ہو, سنتوں کی نیمتھا کا سوال ہے. کل میں نے ذکر کیا تھا حضور کی لائف سے تھوڑے انسٹنسز دے دے کر کہ وہ نیمتا کے سنگھار تھے. کہنے لگے بھائی میں پرماتما تو نہیں ہوں, چلو مان لیتا ہوں دو منٹ کے لیے میں پرماتما ہوں, میرا کہنا مانو, میرا کہنا مانو. کسی نے سوال کیا کہ مہاراج آپ کو ہم کیا کہیں, کہتے ہیں مجھے بھائی سمجھ لو, بڑا دوست سمجھ لو, متر سمجھ لو, پتا سمان سمجھ لو, استاد کی حیثیت میں سمجھ لو, میرے کہے کے مطابق چلو. پھر ان منڈوں پر جب اس کی شان دیکھو پھر جو چاہے کہہ لو. ہمارے حضور کو سوال کیا گیا کہ مہاراج لاہور کا واقعہ, آپ ایک نئی سماج بناؤ. فرمانے لگے سمانے آ گئی بہت ہیں, سب میں مہاپرش آئے, سب کی یہی تعلیم رہی ہے, ہم بھولتے رہے, ہم وہ آ کر تازہ کرتے رہے. مثال دی کنویں آگے ہی بہت لگے پڑے ہیں, نیا کنواں کھودنے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھے, और मल्टीप्लाई करने का क्या सवाल है? पहले हिंदू थे, हिंदू की इसके बाद सैकड़ों शाखें बन गई, कोई वैश्य नहीं, कोई 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 मुसलमान में वहां 72 फिरके बन गए हैं, ईसाई है उनके भी 10-15 फिरके हैं, आगे जैन है, जैनियों में कई हैं, बोधियों में कई हैं। अरे भाई मल्टीप्लाई करने से क्या बनेगा? जो चीज, जो तालीम बेसिक है उसको पकड़ो, जिसने जाना उसकी सोबत करो, जीव की कल्याण हो जाए। तो किसी समाज में कहा छोड़ो, फिर गौर से समझ का मतलब कि समाज छोड़ो तो नई और बनानी पड़ेगी ना, आगे ही बहुत है। तो जिसमें प्रभु ने रखा रहो, उसमें महापुरुष आए हैं, उनकी तालीम को जानो। उन्हें क्या तालीम दी? सब महापुरुषों ने यही दी। किसी अनुभवी पुरुष के चरणों में बैठो, समझे, हकीकत को पा जाओ। अगर किसी समाज की जकड़ों में रहकर अनुभवी पुरुष के चरणों में बैठना नसीब नहीं हुआ, जन्म बर्बाद चला गया। हकीकत को नहीं पा सको, अच्छे कर्म करोगे अच्छे फल भोगोगे, बुरे करोगे बुरे, आने जाने का सामान बना रहेगा। समझे मुझे? अब एक फकीर ने कहा, हरगिज मगो कि काबा से बुतखाना बेतरस, ये कभी न कहो कि काबे से बुतखाना अच्छा है या बुतखाने से काबा अच्छा। क्यों? दोनों में किन रखा है यादगार का महापुरुष प्रभु की? काबा शरीफ में हजर अश्वद है, एक काला पत्थर है जिसको हजरत इब्राहिम ने चूमा था, सब जाते उसको उस महापुरुषों की यादगार और प्रभु की यादगार, खुदा की यादगार में एक जगह बनाई। मंदिरों में बुत बनाकर ठाकुर के उसकी याद का बहाना है ना, दोनों में एक ही जैसे उस प्रभु की जिद बनाकर उसकी यादगार का बहाना बनाया। फिर क्या बस तेरी नजर में कौन अच्छा? बड़ा साफ जवाब दिया है, हर जा के हस्त जलवाए जाना ना बेहतर। जिस जगह उसका जलवा मैनिफेस्टेड है वो दोनों से मैनिफेस्टेड जलवा कहाँ मिलेगा आपको? ये तो पुष्प में मिलेगा ना, वो चलता फिरता परमात्मा है यार। जो शरीर से डरते हैं वो कहते हैं मर्दान खुदा खुदा न बाशन, खुदा के बंदे खुदा नहीं हो सकते, लेकर ले खुदा जुदा न बाशन, वो खुदा से जुदा भी नहीं हो सकते। जब खुदा की खबर देता तो कौन हो सकता है जिसका कोई संगी साथी नहीं? कान यहां से ना पकड़ा है जैसे पकड़, जिनकी आंख खुल जाती है वो क्या कहते हैं? हुसूर साहब ने कहा खल्क मी गोयद के खुसरो बुत परस्ती में गुनाह। दुनिया कहती है खुसरो बुत परस्त बन गया, मदीना औलिया के चीज थे। खल्क मी गोयद के खुसरो बुत परस्ती में गुनाह, कहते हैं आरे आरे मैं कुन बा खल्को आलम खा में, हाँ हाँ मैं बुत परस्त हूँ। अरे तुमसे मैंने क्या लेना, मैंने तो उससे लेना। नंदलाल साहब थे, उसको कहा हाफिज साहब की एक गजल का जवाब देते हुए, कहते हैं उन्होंने लिखा था कि अगर तुम प्रभु को पाना चाहते हो, मती मातल के मंतावी अदी दुनिया वायमढ़ा, अरे प्रभु को पाना चाहते हो तो सबसे किनारा दुनिया छोड़ छोड़ के जंगलों में जाओ। बात तो सही की, पर यहां पर एक बड़ी राहत की बात, भाई नंदलाल उसका जवाब देते हैं, सदा हाजर भवत दायम बबी दीदारे पाक जा। खुदा तो ये है सामने खड़ा, उसके पास दीदारों से जलवा हो रहा है ना, मैनिफेस्टेड। एक मकान से जोत जग रही हो तो मकान मनोहर होता है नहीं, जैसी अंतर की आत्मा का कॉन्टेक्ट हायर से होगा वैसा बाहर उसका एक्सप्रेशन होगा। पहली बात मैं याद करूं, आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ हार्ट मैन स्पीक्स, جو دن میں بچ رہی حالت ہے ویسا اثر لے کر اس کے بچن ہاتھ. اگر ہمارے انتر میں دنیا کا رنگ ہے کام کا کروڑ کا عیشا ویسی چارجنگ ہوگی میں لفظوں میں. اگر کسی آتما میں پریم کا رنگ ہے ویسی ریڈیشن ہوگی. جس کے اندر دنیا کا رنگ ہے جیسی شوبت ویسا رنگ. جس کے اندر پربھو کا رنگ ہے اس کی شوبت سے پربھو کا رنگ ملے. تو انبھی پرشوں کے اندر وہ پریم کے اوور فلوئنگ پیالے ہوتے ہیں. سوبر بھرے پریم رس رنگ اگتے کیا اوسار کے وہ پریم کے اوور اوور کر جلنے والے کہو فور فلو کرنے والے پیالے ہوتے ہیں. ان کو دیکھ کر ہمیں بھی چاہ بن جاتا. پہلوان کو دیکھ کر پہلوانی کے چاہ بنتا ہے. ایسے انبھی پش کو دیکھ کر ہمارا بھی جی کرتا. بھول جاتی ہے دیدی جس محسم نہ سنسا بھول جاتا. اس لیے کہا بندہ عشق چنی پھر پریم کے بندے بنو سب حسم نسوں کو بھول جاؤ. تم کون اب آپ سمجھے آپ کون. آپ چیتن سروپ آتما ہو نہ دے ہو نہ ذات ہو نہ آتما کی ذات وہی جو پرماتما کی ہے. تو یہ تعلیم دینے مہا پرش میں اس دنیا میں آیا کرتے ہیں. کون دیتے رہتے دیتے ہی نہیں بلکہ دکھاتے رہتے انوبھو کراتے رہتے. اس کی نشانی ہی نہیں ہے. سدگر ملے اندھیرا جائے جان دیکھتا رہا. اس کے ملنے کی یہ نشانی بٹھائے گا چائے کا پردہ تھوڑی دیر کی نہیں بٹھائے گا. جب ڈیویلپ ہو جائے ہر جگہ وہی تو ذرا کیسے کرتا ہے ہماری سرتالی کو کھینچے سن گرو بلوان. اور گرو لفظ کے معنی بھی جو دینے میں پرکاش کرے. ارے لیکچر دینے والے کا نام گرو نہیں. کتھا جان کرنے والے کا نام گرو نہیں. باری چین چکر کیسے بنانے چاہیے رسم نماز کیسے ادا کرنی چاہیے پوجا کیسے کرنی چاہیے یہ نماز یہ کوئی بھائی کر سکتا. گرو لفظ میں نے وہی ہے جو تک جوتی کا وکاش کر سکتا تھوڑی پونجی دے سکتا. پھر کہا کتنی دیر میں کبیر صاحب سے سوال کیا کون سا سدگر تمہیں دل سے بھاتا تو فرمانے لگے سادو سو سدگر موئے بھاوا ہے. پہلے کہا جو اس کا رس ست نام کا رس پا رہا ہو ہمیں دے سکتا ہو. پھر کوئی نشانی پردہ دور کرے آنکھ کا نج درشن دکھلاوے. جو سیاہی کے پردے کو ہٹا کر نج کا انوبھو کرا سکتا ہے اس کا سدگر ہمیں دل سے بھاوا. جو چھٹی کو ادگیت کو ناد کا انوبھو کرا سکتا ہے تو نانے گزنتے سو میرا گلے. پھر یہاں تک آئے کتنی دیر میں تلسی صاحب کہتے ایک پیر میں مکت کراوے سو سات گرو موہی بھاوا. ایک پیر میں بٹھائے تین گھنٹے میں انوبھو کی پوجی دے دیں. جاؤ ڈھونڈو بھائی ہمارے حضور تھے رستے جاتے جاتے اگلا ناد پکڑا دیتے تھے. جو تھوڑے سے پیار سے دیکھتے تھے جس بھول کر بالکل بت بن جاتا جس جسمانی کی ہوش نہیں ہے. جو ان کو باہر کے لیے آؤں سے دیکھتے رہتے تھے وہ تو یہی دیکھتے وہ یہ تھے وہ تھے. ارے میں نے پہلے یاد کیا تھا گرو کو کون جانتا ہے جتنا وہ اس کو جنا ہے. ایک بچہ ہو نکر پہن کر بڑا اکڑا کھڑا ہو ماتا کے سامنے کہے ماتا پوچھتی ہے بچہ تو مجھے جانتا ہے. ہاں ماتا میں تجھے خوب جانتا ہوں. ارے بچہ ماتا کو کیا جانتا جانتا نہیں. ایسے ہی انبھی پوش دنیا میں آتے ہیں لوگ ان کو کرائیا کہتے ہیں. گرو نانک صاحب جیسی ہستی کو ہمارے دور سے پہلے بڑی مخالفت لوگوں نے کی. ایک گاؤں میں گئے ماں پتھروں کے پھول برسا گئے کہہ رہے ہاں بھائی ٹھیک ہے آپ نے ہماری بڑی آو وقت کی ہے ٹھیک ہے. تو ان بھائی پوشوں کا پیار سب سے ہوتا ہے. دوستوں سے تو سب کا ہوتا ہے ان کا دشمن بھی ہے. کئی بار مخالفت تھی کئی بھائی پرچار خراب کرتے تھے تو وہ کہتے ہیں بھائی آپ کو کھانے کی تکلیف ہے لنگر تو گرو کا پیار یہی کھا لیا. بات سمجھے نہیں हमने जीवन से सबक सीखना है। वो क्या तालीम, कितना विशाल तालीम है, कितनी सुख ख्याल करने से सुख आता है। आज भाई भाई के प्यारे जुदा हो रहे हैं, तालीम क्या है, सच पूछते हो तो उन्होंने वहां पर छाकर ऐसी कॉमन ग्राउंड बनाते हैं जो सब मिलकर बैठते हैं। ये बातें मैंने आपके सामने क्यों रखी, ये बताने के लिए यहां जो आप भाई साहब इकट्ठे हैं किस ग्राउंड पर खड़े, एक ऐसी कॉमन ग्राउंड है जो हजूर ने स्पेशल अपनी लाइफ टाइम में ही आप गुरमत सिद्धांत आने वाली नस्लों का मजहब क्या होगा एक हेडिंग 1935 में लिखी गई थी। हजूर का कायदा था, गुरमत सिद्धांत लिखकर ले जाई जाती थी, मैं लिख भेजता था सुनाता था, तो साथ दो चार दस को बिठा लिया करते थे। तो जब सुनाने लगे यही बात, तो एक भाई साथ बैठे हुए कहने लगे महाराज देखो ये पिछली गोई करता, कहने लगे इसके स्वाद कोई मतलब राय नहीं सकता। तो उन्होंने आपको पता है उन्होंने फरमाया कि कामन ग्राउंड रखो जिस पर सब समाजों के भाई मिलकर बैठ सके, उसका नाम रूहानी कॉलेज रखो, रूहानी ससैय नफसुन का सिद्ध सिर्फ सदाचार और हायर कॉन्टेक्ट लोगों का जुड़ना, ये पेश हो नाम की तालीम पेश हो, सोर्स को शब्द के साथ जोड़ने की तालीम पेश हो सब भाई आए। तो ये भाई जिस ग्राउंड पर आप बैठे हो उन्हीं के दिल का नक्शा जिसको उन्होंने पेश किया और उसी का नक्शा वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ रिलीजन्स में आ रहा। एक मजहब का इकट्ठा बैठना बड़ा मुश्किल था, माफ करना, एक मजहब में कई फिरके और एक मजहब छोड़ के सब मजहब के लोग इकट्ठे बैठ गए जो नामकुन बात थी। लोग आम कहते हैं ये भाई कुछ कोई माली हौलिया हो गया इनको सबको बिठाने का, अरे भाई सामने चीज आ गई सब समाज में तो भाई 1.5-2 लाख के करीब होते हैं बैठ सकती है। यही महापुरुष की कामन ग्राउंड, हम भूलते रहते हैं वो ताजा करते हैं। सच पूछते हो आज अगर हमारे महापुरुष आ जाएं, हमारी हालत को आकर देखें, देवल जिस होना क्योंकि उनकी तालीम को हम नहीं कर, सदगुरु ऐसा जानिए जो सबसे लय मिलाए जी, टू ब्रिंग ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड टुगेदर। आप अपनी हैसियत अब समझ रहे हैं, कौन सा आदर्श है जिसको पाने के लिए ऋषि मुनि महात्मा हमेशा आते हैं, यजुर्वेद में जाइए, ऋग्वेद में पढ़िए, हजारों में मिलकर उसके गुणवान, सबसे पुरातन ग्रंथ वेद है तारीखी लिहाज से, उसमें बड़े ऋषि मुनि की बात एक ही नहीं कई उठ। उसके बाद जिनने महापुरुष आए सब महापुरुष की वाणी एक ही महापुरुष की वाणी एक ही ग्रंथ में थी और लेटेस्ट ग्रंथ सिख भाइयों का गुरु ग्रंथ साहब जिसको कहते हैं, उसमें जितने महापुरुषों की वाणी मिल सकी गुरु अर्जुन साहब ने इकट्ठी की, जितनी मिल सकी। क्या मतलब, जो नाम के रसिये थे उस प्रभु के नशे को पा चुके थे सबको इकट्ठा कर लिया, एक बैंक्वेट हॉल ऑफ स्पिरिचुअलिटी का कार्बन ग्राउंड भरा, खत्री ब्राह्मण शूद वैश उपदेश क्या वर्णों को साझा, और खत्री ब्राह्मण शूद वैश हमने बनाए कि परमात्मा ने तो इंसान बनाए, जैसा किसी ने काम किया वैसा करा, डिवीन ऑफ लेबर कह दो, जिन्होंने प्रभु का काम किया वो ब्राह्मण कहलाए, जिन्होंने रक्षा का काम किया वो क्षत्रिय कहलाए, जिनने खाने पीने पीने का सामान मुहैया करने का किया वो वैश कहलाए, बाकी सब सर्वश्रेष्ठ डिवीन ऑफ लेबर थी। आगे एक समाज से दूसरे में जा सकता था, मरा ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण, हिंदू का आई मीन क्षत्रिय का बेटा ही क्षत्रिय, ये बात नहीं, डेवलपमेंट का सवाल है। आखिरी नक्शा जो पेश किया गया तो कामन ग्राउंड तो आगे बना दी। गुरु नानक साहब ने चार सफर किए हैं, 79 वर्ष के ट्रेवल्स किए, एक नॉर्थ को हिमालय की पहाड़ियों पर, एक साउथ सिलोन तक, एक ईस्ट बर्मा और चाइना तक, एक वेस्ट में मक्का मदीना तक, पर्शिया अफगानिस्तान, अब सारे वाणी में गुरुदेव साहब की वाणी में है क्या, पर्शियन का एक शब्द मिलता है सारे गुरु साहब जिस तरफ के शायद कई साल उन्होंने ट्रैवल में लगाए, समझे, मगर वाणी एक शब्द मिला है, एक मिश्र है बस, यके अर्ज गुस्तुम पेश तो दरगोश तुम कतार हक्का कबीर करीम तू बे आ पर्वतता, ये पर्शियन का शब्द है। एक क्या दो तीन चार साल पांच साल की जो उदासी थी ट्रैवल एक ही शब्द पर करे कॉमन सेंस नहीं मानते। तो मेरे याद करने का मतलब सारे महापुरुषों की वाणी एक जगह इकट्ठे करने का मतलब था, एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया था कि सब समाजों के भाई खत्री हो ब्राह्मण हो शूद वैश हो सब इकट्ठे बैठे और उसको गुनावाद गए, ये उस मालिक का शुक्रिया है। हमारे हजूर की खास मिशन था ये सब भाई दिन में उनकी समाज में कोई तफरका नहीं था, ये हिंदू है या मुस्लिम सब मिलता। एक दफा जब लाहौर हजूर गए तो आर्या समाजी भाई आकर कहने लगे भाई आप सबका लंगर एक कर दो। कहले भाई हमारा लंगर तो है एक ही, लोग तंग दिल और तंग नजर हैं, राजपीतों के साथ तुम्हारों को बैठाया जाए तो वो भाग जाएंगे, पहले उनको तुम एक करो, हमारा लंगर बनता है कि खिलाया अलग अलग देते हैं, बाकी सत्संग में कोई तमीज नहीं, तुम्हारा आगे बैठ जाए ब्राह्मण पीछे बैठ जाए, बात समझे। ये नजरिया है महापुरुष में आते हैं, जिनको वहां पहुंचते वो देखते हैं कदर करते हैं, सच पूछते हो बहुत लोग महात्मा की जीवन उनकी कदर नहीं जानते न कर सकते, सिर्फ वही लोग जान सकते हैं जिनको वो आप दे आते हैं, बात तो ये। कल मैंने हमारा जीवन कैसे बन सकता ये पेश था, अनु की जीवन से थोड़े रेफरेंसेस दे देकर पेश किया, आज इस वक्त आपके सामने रखा गया कि नजरिया एंगल ऑफ विजन मजमू और मानवता के लिहाज से क्या है। ऐसे महापुरुष के नाम ले वाहिर हूं और हम तंग नजरियों में रहे, वो एक बात सिखलाते हैं प्यार, परमात्मा प्रेम है, आत्मा उसकी अंश है, ये भी प्रेम का स्वरूप है और प्रभु के पाने का जरिया भी प्रेम, वो ओवरफ्लोइंग प्याला है, जब वो बैठते सब हस्म रस्मों को भूल जाते हैं, हजूर के वक्त हर एक ये समझता कि मुझसे ही उनका सबसे ज्यादा प्यार, गरीब हो कपड़े फटे वाला हो या अमीर हो कोई भी, हर एक जैसा कि मेरे ही सबसे ज्यादा मुझसे प्यार कर, ये निशानी तो हृदय का रेडिएशन है ना। तो मेरे करने वाले ऐसे महापुरुष की याद में बैठे, अरे महापुरुष होते ही ऐसे, उनकी आत्मा में एक मिक्न किसी ताकत होती है, कैसे क्यों वो जिससे लग जाए जिधर तो वो चार्ज हो जाते, बस बात नहीं तो असल मतलब क्या हुआ भाई, हम चार्जिंग के लिए इस नशे के पाने के लिए जाते हैं, रस्म और रवाज ये वो प्रेपरेशन ऑफ दी ग्राउंड है, इससे फायदा उठा लो, मगर इनमें मुक्ति नहीं, याद रहो नेक कर्म करो नेक फल मिलेगा, बद करो बद, ये सारे नेक कर्म है, पूजा करनी पाठ करना ये करना मद करना ये वो ठीक है, मगर लोहे की बेड़ी और सोने की बेड़ी दोनों ही एक जाती है, भगवान किसी ने कहा जिसकी आत्मा में वो नशा आ गया प्रभु का सब उसमें हवन हो जाती है, बात समस्तब्रेज साहब ने कहा कि मुझ में बहुत नशा है इंटॉक्सिकेशन, अगर मैं जिस्म को छोड़ जाऊं जिस्म की खाद बनाकर किसी जमीन में डाल दी जाए वो जमीन से जो कनक उगे उस कनक के खाने वाले का जिक्र नहीं किया, साजिंदा पिंडा उसके परोसने वाला और पकाने वाला मस्त हो जाए, हम इसलिए महापुरुषों के पास जाते, बात समझ रहे हैं, ऐसी हस्ती थी हम हजूर की जिसकी याद में आज हम बैठे हैं, बहुत भाई कई भाई ऐसे हैं जो जिन्होंने खुशकिस्मत थी उनके चरणों में बैठने हमने देख रहे हमको कितना दशा मिला था, हमने तो कदर ही नहीं की भाई, जिन्होंने जिन्हें जिन्नी कृपा की है वो महात्मा मरते नहीं याद रखो, जिस्म छोड़ते हैं वो पावर काम करती रहती है, वो क्राइस्ट पावर है, गॉड पावर। गुरु एक बार नाम देता है और छोड़ता नहीं उस वक्त तक जब तक वो धूमधाम न पहुंचा। तो ये क्राइस्ट ने कहा, आई शैल नेवर लीव दी नॉट फॉर सेइंग इट इन द एंड ऑफ द वर्ल्ड, मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा। वो जिस्म नहीं होते, जो गुरु को मानस जानते जन्म जन्म हो, जो मनुष्य सबके मानुष ही लेंगे क्या लेंगे आप, परमात्मा ही तुमको परमात्मा के साथ मिलाते। तो थोड़े रसों में इस वक्त का मधु अलू के जीवन से जो फायदा हमको मिला या जो विशाल की हमारे सामने पेश की, हम भूलते रहे वो महापुरुष ताजा करते रहे, वही चीज बंद नहीं होती। ऐसी हस्ती आगे भी कामयाब थी, अब भी कामयाब, मगर रहती हमेशा ही भूखे के लिए रोटी, प्यासे के लिए पानी। डिमांड और सप्लाई का नियम हमेशा चल रहता, दे नो इंटरनम, कुदरत की तरफ से ये सामान चलता। तो इस वक्त अगर हम इस तालीम से फायदा, कितना विशाल हृदय बन जाए, भाई भाई का प्यार बन जाए, ये सेल्फिश मोटिव भाई भाई के तत्व और तंजलि बेस किस पर होती है, सेल्फिश मोटिव से, नाम और बढ़ाई के कारण। और सब महापुरुषों की तालीम दे रही ज़ोरास्त्र है। लोगों ने पूछा हमें क्या करना चाहिए, फरमाया जॉइन द आर्मी ऑफ गॉड, प्रभु की फौज में दाखिल। चले क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कैसे लगे, राइटियसनेस, पारसाई। कहने आप इसकी तारीफ कर दो, कहने लें गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीज, शुभ भावनाएं, ख्याल, शुभ वचन और शुभ कर्म। गुरु अर्जुन साहब से पूछा गया सबसे श्रेष्ठ धर्म कौन है, सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर। बोली सिर्फ अपनी है, जमानदानी अपनी है, चीज वही पे, जात पात पूछे देखो, हर को भजे सो हर का हो। भगवान की चीज नहीं चाहिए मुझ, कौन प्यारा है सबसे, जो मुझको सब में देखता और सब में मुझको देखता हूँ। ये है तालीम जिसको पाने के लिए हम महापुरुषों के पास जाते हैं, उनकी आत्मा में गॉड इज ओशन ऑफ इंटॉक्सिकेशन, नशे का एक समुद्र ठाठे मार रहा है परमात्मा, जिसकी सोतो से जुड़ी हो उससे भी नशा रेडिएशन हो, और इसके लिए हम जाते हैं महापुरुष के, जो रिसेप्टिव होते हैं वो ले जाते हैं। चेतन महाप्रभु महापुरुष आते रहते हैं, उनका हर एक महापुरुष का अपना अपना बोला होता है। उनका बोला था हरि बोल, एक धोबी घाट पर चले गए, एक धोबी के किनारे खड़े और कहने लगे हरि बोल हरी बोल, उसे समझे सब कुछ पैसा मांगने वाला आ गया। हम कायदा होते हैं ना, चुप रहे, दो तीन बार जो कहा कि तुम्हें नहीं बोलता भाई, कहले बोलना पड़ेगा, तवज्जो थी ना, कहले ये पीछा भी नहीं छोड़ते, चलो हरी बोल कह ही दो, जब हरी बोल कहा तवज्जो थी, हरी बोल कहने से नशा आ गया, काम काज छोड़कर हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल कर दिया। आपके भाइयों ने देखा हमारे भाई को, क्या क्यों भाई क्या भाषा, कहते हरी बोल, वो आगे कहे हरी बोल, जो हरी बोले उसको देखा चल चल सारा धोबी घाट चिन्ना आते था भाई। बात समझते हो, ये चीज है जिसको हम लेने के लिए महापुरुषों के चरणों में जाते हैं। सारे मध्य बच्चे वही, हर एक मध्य में महापुरुष है, और यही आदर्श पेश किया है, मुनिजी से फायदा वही उठाते हैं जो ऐसे पुरुषों की समझते। गुरु अमरदास जी का तजुर्बा 70 साल का, 72 साल का, इस तलाश में रहे, तीर्थ स्थानों में जाते रहे, क्या कुछ नहीं किया होगा इस बात का पता नहीं, जो उनकी वाणी से मालूम था कोई हरे कर्म धर्म देखे होंगे। आखिर क्या कहते हैं, बहुविध था का कर्म कुमार, मैं थक गया था कर्म कर करके, हरे सदगुरु मिले, अच्छा स्वभाव है, جو ہندہ یا بندہ آخر پور صاحب کے چرنوں میں آئے حقیقت کو پایا ہے. کہتے ہیں بن بھاگنا ایسا سدگن بغیر بھاگو کے ایسا جانتا پرش جس میں تو نصیب ہوا ہے بھائی یہ چیز ہے جو انہوں نے پیش کی. دیکھنا یہ ہے ہم کہاں بیٹھے. نئے بھائیوں کو وہی طاقت کام کر رہی ہے, اس کا نام کبھی کچھ رکھ لو گاڈ پاور از ون, گرو ایک, گرو ایک. وہ مختلف پولوں پر کام کر کے مختلف ناموں سے نامزد کی جاتی ہے, گرو وہی. تو اس کی صحبت میں ہمیں یہ تعریف وشال ہردہ دی. تو اس وقت کا ستسنگ 11 بجنے والے ہیں, ختم ہے. شام کو آپ کے سامنے پیش کی جائے گی کہ ہم کیسے جنتوں میں پھنس گئے اور کیسے نکل سکتے. یہ جنرل ویو تھا ایز مین جو آپ کے سامنے رکھا گیا. کل شام جو آپ کو پیش کیا لیونگ کیسی چاہیے ہمیں. ٹروتھ از ابو آل اینڈ ٹرو لیونگ از اسٹل ابو ٹروتھ. ٹرو لیونگ کا کل شام کا ان کی لائف سے ریفرنس دے کر پیش کیے گئے تھے. جو اس وقت آیا خیال آپ جو آیا مانوتا کے لحاظ سے کیا وشال تعلیم وہ دیتے ہیں, مذہب کون سا پیش کرتے ہیں وہ پیش کیا گیا. اور شام کو 4 سے 6 بجے تک کچھ انر وے کیا پیش کرتے ہیں مہاپر سارے کرتے رہے وہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا. اس وقت کوئی بھائی
جن بھائی وہ جو اپنا جلوہ دکھا کر چلے گئے ہم کو وہ اپنا جلوہ دکھا کر چلے گئے دل میں وہ پریم بان لگا کر چلے گئے دل میں وہ پریم بان لگا کر چلے گئے یہ تیرا کام ہے کہ تو اس پہ غامزن یہ تیرا کام ہے کہ تو ہو اس پہ غامزن ساون تو راہ حق کی بتا کر چلے گئے مرشد تو راہ حق کی بتا کر چلے گئے
بچے ہوتے ہیں جب بھی آتے ہیں دنیا کو نور دے جاتے ہیں روشنی دے جاتے ہیں ان میں کس چیز کی کشش ہوتی وہ پرماتما آپ جو جیتی سروپ ہے اس میں مینیفیسٹڈ ہے وہی لوگوں کی روح کو کھڑی. ایک شاعر نے کہا جہاں حسن نہیں عشق بھی پیدا نہیں ہوتا, جہاں حسن نہیں عشق بھی پیدا نہیں ہوتا, بلبل گلے دیوار پہ پیدا نہیں ہوتا. کبھی آپ نے دیکھا ہے بلبل پھولوں پر کب تو کیا چاہے گی مگر کبھی دیوار پر پھول اکڑے ہوئے ہو اس پر نہیں کیا چاہے گی. وہ خوبصورتی سب میں ہے, اس خوبصورتی کو ہم بھول چکے ہیں. انہوں نے اس کو ثابت کر رکھا بات میں. ان کے انتر روحانی جتنا کسی कैसी करते। परमात्मा आपको पता है बड़ी भारी अट्रैक्शन खिंचावट उसमें होती है, एडियन। प्रेम का नाम दूसरा एडियन है। एडियन न तो जरा ज्यादा दुनिया का काम न करें, सब फिर जाए तो वो परमात्मा प्रेम है, उसमें खींचने वाली ताकत है। जिस हृदय में वो मुजस्म हो जाती है, सबको अपनी तरफ खींचती है। किनको खींचती है सवाल यह आता, निकना तीस पत्थर हो लोहे के जरे या किसी धातु के तरह कहीं भी हो उसको खींच लेगी, मगर एक लोहे का टुकड़ा अगर मिट्टी से भरा पड़ा हो उसको नहीं खींचता, पास पड़ा हो। तो हमारी आत्मा जो मन इंद्र के खिलाफ और जिस्म का मिट्टी का रूप बनी बैठी है, जब तक इसे आजाद न हो वो चीज हम में है, आगे ही मौजूद, खींच नहीं सकती। और ये बाहर से हटना का हो, जिस जिस्मानियत को थोड़ी देर के लिए इससे ऊपर आ जाना का हो, जब भी आओगे वो खींचेगी। महापुरुष दुनिया में आते हैं वो, उन्हीं को लोग पुराइया कहता भाव करना, गुरु नानक जैसी हस्ती उन्हीं को लोगों को अकल बिगाड़ने वाला कहते हैं। पर किन को, जो जिस्म का रूप बने बैठे, इससे परे जिनको कुछ नजर नहीं आता है, जो थोड़ी देर के लिए भी बाहर से हटे वो उन्होंने कशिश महसूस होती है। जितना पूरे तौर से हट जाए उतनी खिंचावट जोर से करके खींचे चले जाते। ये बात तो महापुरुष समय समय पर दुनिया में आते रहते हैं, अपना जलवा दिखाकर चले जाते हैं। वो क्या कहते हैं, क्या भाई तुम नूर के बच्चे हो, यू आर द चिल्ड्रन ऑफ लाइट, मिट्टी और पानी में घिरे पड़े हो, तुम्हारी बादशाह तख्त और ताज सुना पड़ा है, चलो उसको संभालो। ये बाहर मिट्टी पानी में मत पड़ा, इसकी अहमियत इसके दिल से निकलती नहीं। ये समझता है जग मिठा आगे के लिए लिठा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि हे प्रभु, मैं जानता हूं तुम में ला इंतहा दौलत है, मगर मैं इस घर के कूड़े करकट को फेंक नहीं सकता। जिसम साथ आता है साथ नहीं जाता, वो सामान जो जिसम के सबब से बने हैं वो कैसे थे। साथ जाने वाली कौन चीज है, दुनिया में कोई भी नहीं जा सकता साथ। कौन जा सकता है जो इस जिसम जिस्मानिये से एट विल छोड़कर अगले मंडलों की सफर कर सकते। वो कौन लोग हैं, वो हम जैसे इंसान हैं, समझे, आज तक या निपलवे बैठे, वो हम जैसे इंसानी शक्ल रखते हैं। उनका जिसम दुनिया में काम करता नजर आता, तन में आने खल्क और जहां निर्दे खुदा बंदे, जहां तन उनका दुनिया में नजर आता है, मगर जान उनकी प्रभु से जुड़ी पड़े। तन गिरफ्तार है जमीन और रूबा संस्था को, तन तो दुनिया में गिरफ्तार काम करता हुआ ये वो नजर आता है, मगर जब वो चाहता है जिस जिस्मानियत से ऊपर आकर अगले मंडलों की सफर कर सके। तो ऐसे पुरुष जो खुद सफर करते हैं पिंड ब्रह्मन के पार, प्रभु के देश जाते हैं, वही हमको ले जाने के समर्थ। मैंने अभी अर्ज किया था कि इंसानी शक्ल जरूर रखते हैं, इंसानी शक्ल रखते हुए भी उनमें वो परमात्मा जो सबके घट घट में बासी है, उसके साथ उसकी लव लगी है, कह दो उसका वो माउथ पीस बना है, कहो जब चाहे बाहर से हटता है उस तरफ मुंह करता है और प्रहार कर जाता है। मौलाना रूम साहब थे, उनका अंत समय आया, फकीर दोस्त से आए, दुआ करने लगे कि आ खुदा इनको शफा दो। आंख खोल कर कहने लगे ये शफा तुम्हें मुबारक हो। कहने लगे क्यों भाई? कहने आगे तो किसी को दुनिया के झंडे से आजाद होकर हमारी रूप प्रभु की गोद में जाती थी, अब ये समय ऐसा आया है कि ये जिस हमेशा के लिए जो रस्ते में हायल था ये टूटने वाला, और हमेशा ही हम उसकी गोद में जा सके। क्या तुम नहीं चाहते कि जिस चीज को हम हमेशा उसके लाया होना चाहते थे आज समय आया है? तो ये शफा मिलनी चाहिए। ये किन लोगों की कहानी जो प्रभु के गोद का आनंद ले चुके हैं, वो ऐसे पुरुषों का नाम साधु संत महात्मा। नानक कचड़िया सन तोड़ ढूंढ सज्जन संत पकिया, ये जिंदे विछड़े ओ मर जा सको। ये गुरबानी कह रही है, ऐ नानक तू कच्चों का संग छोड़ दे, पक्के सजनों को ढूंढ, जब सारा जहान जवाब दे जाए वो तो मेरे साथ है। इसलिए यही ख्याल सब पूछने का, सच्चा सदगुरु से सच संभालिया, सच्चे सदगुरु के सेवने वाले बनो। सदगुरु किसको कहते हैं? सतगुरु सत स्वरूप है, पिता पूते के रंगीने, पिता पूतवन की निशान, आई एम माई फादर वन, सोहंग भेद न कही। जो इस अवस्था को पा गया सदगुरु या प्रभु रहे, प्रभु के साथ वो दुनिया में रम रहा है, वही सच्चे मन होगी। जिस जिस मानी बोलता ये तो कपड़ा उतारना पड़ता, सूर का भी सूक्ष्म का भी कारण का भी, वो ताकत इसमें इस ह्यूमन पोल पर काम करते हैं, तो वो ताकत को गुरु कहते हैं, उसको क्राइस्ट पावर कहते हैं, उसको गुरु पावर कहते हैं। बाय पांडे की तरह तुम्हारे साथ रहता, समझाता है, बुझाता है, दुआ सुभाता है, हमदर्द भी करता है, प्यार भी करता है, मगर कहता क्या है आपको पता है? इंश्योरेंस एजेंट होता है, बड़ी मीठी मीठी कहानियां सुनाकर आखिर कहता है इंश्योरेंस के आलोक, तुम अगर जीते भी रहे तो बुरी उम्र में काम आएंगे पैसे, मर गए पहले तो पूरे पैसे मिल जाएंगे। ऐसा महापुरुष भी आते हैं बड़े प्यार की बातें कर करके आखिर कहते हैं भाइयों चलो अपने घर, यहां क्या पड़ा है? समझे क्या है? सुखों का उपदेश हमेशा आत्मा को होता है, तू थी सत नाम की गोटी, मन कीड़े के साथ लग गई, अपने घर को भूल गई, भटक रहे, तेरा धाम आधार में प्यारी तू धर सम्राट बना ले, आत्मा तेरा श्री वतन वहां है जहां ये धर नहीं मैटर नहीं, तू मिट्टी पानी में फंस रही, सारो सियाने एक हिम्मत, जब जब भी महापुरुष आए वो यही बात है। यही फकीरों ने कहा और श्रेष्ठ नशेम ने तो शर्मत बाद आकानी मिट्टी में खते खाते, आत्मा तेरे से रहने की जगह वो अर्श है, कहां के रहने वाले कहां मिट्टी पानी में फंस रहे। गुरु नानक साहब ने प्रार्थना की है कि हे प्रभु तू निज घर वसीयला हाँ रोल पस में थे, तू तो नील घर में बास कर रहा है, मैं मिट्टी पानी में गले ही रह रहा हूं। इन्होंने लिया देखा, ये समझ देने आया करते हैं वहां पर, डब्बा डेरा ये नहीं जा डेरा पे जाओ, ये तुम्हारे रहने का मुकाम नहीं भाई, जो तेरा असल डेरा है वो कोई और है, तू चेतन स्वरूप आत्मा है, तेरा असली वतन वो है जो महाचेतन स्वरूप है, तो मन के अजीब होकर इंद्र के घाट पर बात जिसमें जगत का रूप बन रही है, गली में ख्वार हो रही है, असल रात को भूल गई हकीकत घर जाना भूल गया, परदेश में भटक रहे। ये है तालीम जो महापुरुष आते हैं और अपना नमूना दिखाकर लोगों को तवज्जो अपनी तरफ दिलाते हैं। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, समय आता है। हम उन मीठी मीठी बातों में भूले रहते हैं, जो सबक देते हैं उस पर तवज्जो नहीं देते हैं। नतीजा क्या है? वो चले जाते हैं, हम हाथ खोलते रह जाते हैं। जो उनकी बात को सुन लेता है उसको अमल में ना कर ये एट विल जिसम को छोड़ना सीख जाता है और अगले मिलों में सफर कर सकता है। इंड से अंड, अंड से ब्रह्मंड, ब्रह्मंड से पार, ब्रह्मंड और पार जा सकता है एट विल। वो अपने जन्म पाने का पूरा फायदा उठा गया और सदगुरु से पूरा जिंदगी में फायदा उठा लिया। और ये फरमाया करते थे कि जो काम यहां हम घंटों में कर सकते हैं, अगले मंडलों में महीनों और सालों में कर सकते हैं। किमिया भी हमारे रूह थे, उनका तरीका अजीब था, सबसे प्यार करना। छोटा सा भी तक मेरे से सबसे ज्यादा प्यार है, बड़ा अपनी वजह से भी करता। उनको वो लोग ज्यादा प्यारे थे जो भजन करते थे। आदर तो सबको देते थे, सभी तरह प्रभु आदर देता है, मेरी दिए चलो उनके भी आदर देते। और असल बात अपनी सामने रखते थे हमेशा, पूछते जवाए क्यों भाई क्या है। महाराज मेरी बीवी बीमार थी, अब राजी पाना बच्चा पहले इम्तहान में अब पास हो गया, सिलेक्शन में आ गया, पहला काम था पूरा हो गया, ये है वो है। सुन पा आखिर कहते थे क्यों भाई मेरा काम भी कुछ किए, वो काम ना मेरा काम हो, वो तो हमारे ही काम है और उनका क्या काम था वही इंसिन से जिनका। मुझे याद है जब मैं शुरू शुरू में था, एक साथ मेरे पास आए, कहने लगे कि भाई तुम जिंदगी का बीमा करा लो, इंश्योरेंस करा लो। मैंने कहा भाई तुम मेरी मौत का बीमा करने आया, अगर 10 साल में मर जाऊं तो पूरे पैसे ले जाऊं क्यों भाई? अगर पूरी उम्र कहते तो सब पूरे पैसे देने पड़े। तो मैंने कहा भाई मैंने जिंदगी बीमा तो करा दिया, आज उड़ के आज बाकी तुम मौत का बीमा करना चाहते ये अलग बात है भाई। जान देनी है यमों को देने की बजाय क्यों न किसी समृद्ध पुरुष के हवाले कर, बेखौफ हो जाओ, समझे? मौत का खौफ ना रहे, धर्मराज के कागज फट जाए, जीते जी भी उसकी गोद में, मर के भी उसकी गोद में रहो। ये महापुरुष देने आए तो बड़े प्यार से समझाते हैं, तरीके तरीके से समझाते हैं। असल बात यही कहते हैं कि भाई ये देश तेरा देश नहीं, ये कौमें तेरी कौमें नहीं, ये मुल्क तेरे मुल्क नहीं। तेरा असल वतन सतनाम, सत्संग उस पिता का घर है, यहां का तू रहने वाला कहां पर है, ये उनका सच्चा सारे भाव। तो वो ये खाली कहते ही नहीं थे कि वो तुम्हारा घर है, हमको इस घर से उस घर ले जाने में मदद करते थे। और कुछ किसी चीज दुकानदार के पास जाओ ना, वो थोड़ी चीज खाने को चीज देता, उसे चिंगा कहते हैं पंजाबी, और खाता हाँ भाई पाव भाई ये दे दे, आठ सर ये दे दे, वो साथ चिंगा भी देते, थोड़ा बिठाया थोड़ा साथ अंतर रखे, फिर से कैसे ऊपर आना समझे, थोड़ी सी मिठास दे देते थे अब भाई का। महापुरुषों के जीव गरीब तीखे होते, जलवा दे जाते हैं, दिखा जाते हैं, उसकी पूंजी देकर आगे मदद करते हैं कि आप करो, और कहते हैं जीते जी कर लो। बोलो जी बड़े भागों से मिलता है, इसमें ही हम उस हकीकत को पा सकते हैं जल्दी से जल्दी, मन इसके मरहले होते हैं। एक जन्म गुरुभक्ति कर, दूसरे जन्म नाम, इसे मैं दुनिया से हटकर फिर आके चौथे में बीज रहा हूं। तो ये अवस्था है जिससे सबको गुजरना पड़ता है, पहला कदम गुरु भक्ति, लव ऑफ द मास्टर, गुरु भक्ति। भक्ति नाम है प्रेम का, इश्क का। ये एक ऐसा समुद्र है, बैरे इश्क के हित इस किनारा नहीं। एक ऐसा समुद्र है जिसका कोई किनारा नहीं, जो भी जहां विश्व कारण है चारण है, जान हवाले करके जाने को चलो वो ले चलती मित्र। क्या देना पड़ता, देना भी कुछ नहीं पड़ता और रहते भी कुछ नहीं। सलमान साहब से पूछा गया था कि महाराज आपको क्या मिला मुर्शिद के पास जाकर, कहते भाई देखो तन दा दूं और जान दा दूं और ईमान दा दूं। आज दुनिया में जिन्हें झगड़े हैं तन के, अपने तन को बचाने के लिए किन के तन हम तोड़ देते हैं। इस तन से तलकात रखने वालों के अटैच में मुंह में आकर दूसरे के खून बहाते, हक मारते, दुख देते, क्लैश देते। कहते हैं ये तन बटेरे की बुनियाद के हवाले कर रहे। कहते हैं फिर तन से ऊपर जान को बचाने के कई तन हम तोड़ते। कहते जान भी बटेरा था वो भी हवाले कर रहे। इससे बढ़कर ईमान, ईमान की खतर हजरे जानों जाने तरफ कर देते। सौ का ईमान था ना वही पाकिस्तान जिसमें 14 लाख जाने हमने तलब की। तो कहते हैं ये सारी बखेरे के काम के सब उसके हवाले कर दिए। सूदा सदगर सूद नवे दानक नहीं, इससे बढ़कर अब क्या फायदा हो, अब झंझट खत्म हो। तो सारे महापुरुषों ने यही कहा तन संतन का, धन संतन का, मन संतन का किया कर दिए। कहते फिर क्या कि पारग्रह भी किया। यही रास्ते में रुकावट है, इसी में हमारी सब जकड़ी पड़ी है। बाजे लोग बाहरी दुनिया में जकड़े पड़े हैं, बाजे परलोक से जकड़े पड़े हैं, बाजे उससे ऊपर बेकुल से जकड़े पड़े हैं। अरे तीनों के पास, इसलिए कहा प्रेमी को क्या चाहिए। प्रेमी को स्वर्ग न चाहो, वैकुंठ न चाहो, मोय प्रीत चरण कहूं ला रहे। न मुझे स्वर्ग परलोक चाहिए, न वैकुंठ चाहिए, मुझे तो उसका प्यार चाहिए बस। जिसकी ये अवस्था बनती है, अरे भाई दुनिया में रहते हुए आजाद है, बैराग किसको कहते हैं। प्रेमी सबसे बड़ा बैरागी है, प्रेमी सबसे बड़ा बैरागी। एक जगह लाव लगी हो, कोई नजर नहीं आता हो, कारोबार छोड़ने से बैराग नहीं बनता। बैराग सच्चे माने में बनता है जब हमारी सोच या टेंशन एक जगह लग जाए, और कैसी जगह जो खींचने वाली हो, मिटना किसी ताकत रखती। तुम जरा मुंह करो से इस बात से हटाकर, ख्याल और जिस्म की मिट्टी पाने से अलहदा करो, खींच जाते। चार्ज बॉडी हो तो ऐसी हस्ती दुनिया में भी काम करती है और मरकर भी तुम्हारे साथ रहती है और छोड़ती नहीं उस वक्त तक जब तक, क्या फरमाया करते थे हो, गुरु जब नाम देता है तो साथ हो बैठता और उस वक्त तक नहीं छोड़ता जब तक कि प्रभु की गोद में, सतनाम की गोद में न पहुंचा। आगे सतनाम तुमको अल्लाह का जमाना भी व्यवस्था मेहनत और स्वामी पद में पहुंचा। तो ऐसी हस्ती का मिलना बड़े भागों से, जो यहां भी बातों बाशत दर मकानों ला मकान, जो तुम्हारे साथ रहे इस दुनिया में भी और अगली दुनिया में, क्यों बीमारी या शराब और दुकान, जब इस दुनिया से छुट्टी हो जाओ फिर भी तुम्हारे साथ है। दुनिया में हर एक इंसान कोई जब उसकी वर्णी होगी तब तक तो साथ है। सुख में आन बहुत मिल बैठत, रात क्यों जिस घेरे विपत परी सभी संसाधक कब नाम। कोई दुख में, कोई गरीबी में, कोई नादानी में, कोई बीमारी में, कोई लाचारी में, सब छोड़ जाएंगे। बड़े सदाचारी भी होंगे तो क्या करेंगे, हद अंत समझ। वो इंसान जिसको छोड़ना छोड़ता, मौत के समय आपको पता क्या होता, सारे महापुरुषों ने जिक्र किया है कि बड़ा भारी दुख होता। गुरबानी में आता है जिन वाणी कर दिए हड्डों को कड़का, जिन वाणी कर दिए हड्डों को कड़का कर निकालते थे। तो ऐसे पुरुष यही कुरान शरीफ में आता है कि मरते समय इतना दुख होता है कितना, जितना के पाखाने के रस्ते कांटे वाली झाड़ी डालकर मुंह के रस्ते चल दिया। श्रीमद भागवत में जिक्र आता है इतना दुख होता जितना 10,000 बिच्छू इकट्ठा डंग मारे। भाई एक बिच्छू लड़ जाए तो खैर नहीं, 10,000 लड़ जाए तो आपने देखे होंगे अंत में क्या होता। लास्ट एनिमी दैट वी हैव टू कॉन्कर इज डेथ। आखिरी दुश्मन जिस पर हमने फतह पानी वो मौत। पता कैसे पाओगे, एक्सेप्शन तो कोई है नहीं। राणा राव नकोर है रंग न तंग फकीर, वारी आपो अपनी कोई न बाजी थी, न बादशाह रहे न रैयत रहे। बड़े बड़े फिलासफर, बड़े बड़े दंडनाथ आए और बड़े बड़े वली अवतार भी आए, दे जीत के और फिर छोड़ गए और हमने भी छोड़ दिया। नो एक्सेप्शन टू द रूल। आप पता कैसे पाओगे कि जीते जी मरना सीख जाओ, जिसम से बाहर अच्छा ऊपर आना सीख जाओ। मौत के समय तो जिसम छूटता ही है, जीते जी छोड़ना सीख जाओ। क्या ये मुमकिन है? संत इतिहास जो गया कभी आकर अपनी खबर नहीं देता। संजन जाते हैं आते नहीं, और खबर भी देते हैं, ले जाने का सामान भी करते हैं, साथ एक्सपीरियंस भी देते हैं, साथ थोड़ा सा चुंगा भी दे देते हैं। थोड़ा बैठाया रू ऊपर आए आंख खुली पिंछे ऊपर आ गए, पहले बताते कहते आगे चलो भाई रोज करो। तो सबसे पहले जो सब महापुरुषों ने कहा कि भाई जीते जी मरना सीखो, लर्न टू डाई सो दैट यू मे बिगिन, मरना सीखो भाई ताकि तुमको हमेशा का जीवन मिले। हम जिसम छोड़ने से क्यों डरते, उसके दो कारण थे। पहला कारण कि हमें मरना नहीं आया। मरते समय क्या होता है आपने देखा है, नीचे से रूह से मिटती है, चक्कर टूटते हैं, कंठ बजते हैं, ऐसे सो जाते नहीं है मरना और मरने का, फिर ड्रॉपशिप हो जाता है। दूसरे कहां जाना उसका पता नहीं। तो महापुरुष पहले आपको जीते जी मरना सिखलाते। गुरु अमरदास जी साहब ने फरमाया मरने ते सब जग डरे, जीविया लोड़े सबको, मरने से सारा जहां डरता है, हर कोई यही चाहता मैं 2 घंटे और जी लू। दूसरा जहां जाना उसका पता नहीं। अगर रोज गुरुमुख आवे जाए निशंग तो उसको क्या माफ करो। गुरु प्रसाद ही जीवित मरे ता हुक्मे मुझे को। अगर किसी अनुभवी पुरुष की कृपा से ये जीते जी मरने का राज जान जाए, प्रैक्टिकली राइज अबव करना सीख जाए, तब उस के हुक्म के बूझने वाला बन जाएगा। कॉन्शियस वर्कर ऑफ द डिवाइन प्लान। गुरु नानक साहब ने फरमाया नानक हुक्मे जे बुझे ता हम मैं कह दूंगा, उसने हम नहीं रखी क्या तेरे वो देखता वो करता। कभी पूर्ण पुरुष ये नहीं सुनेगा कि मैं करता हूं, कहता मेरा गुरु करता मेरा परमात्मा, मेरा किया कछु न हो जो हर भावे को हो। फिर क्या होगा, ये गुरु कृपा से हो सकती है। गुरु हमें पहले पैर जीते जी मरना सिखलाता। पहले दिन बार फैली हुई सोच को मैंने आज सुबह भी अर्ज की थी कि हमारी गति उस गड्ढे की तरह है जिस पर बोझ लदा पड़ा हो और कीचड़ में फंस रहा हो वो कैसे निकल सकता। किसी को रहम आ जाए हमारी हालत इजहार पर, वो हमारे बोझ को हल्का करे फिर बाहर निकाले, नहीं तो कैसे निकले। जितने साधन हम करते हैं उन सब का तलक इन्हीं के घाट से है, समझे। तो आगे जो इंद्रियों का रूप बना बैठा है, साधन वो करता है जिनका तलक इंद्रियों के घाट से है। अरे भाई इंद्रियों के घाट के ऊपर कैसे आते हो, ठंडे जल से निकले। एक सम्राट पुरुष की कहानी है, जो सुतवंत है एट विल राइज अबव करता है, मरिए तो मर जाइए फूट पड़े संसार, ऐसी मरनी जो मरे दिन में 100 बार। तो महापुरुष के पास जाते हैं लोग तो मौत से डरते हैं ना, तो उसी गली में हम मरने के लिए जाते हैं। कई दिन मरने को आ रही है दुनिया तेरी गली। गीता में फरमाया कि चोला बदलता, अरे भाई चोला बदलना अब सीख जाओ तो मौत का खौफ ना रहे ना। तो महापुरुष पहले दिन हमको यही तालीम सब महापुरुषों ने दी, क्या कि जीते जी मरो। कबीर साहब ने कहा मरता मरता जग मुआ, साचा मुआ नको, सारा जहां मर मर कर फिर पैदा होता फिर मरता है। क्यों कि जो सचमुच मरना था ना, जीते जी पिन को छोड़ को आगे एटवेल जाना था वो नहीं सीखा। जीते जी पिन को कौन जा सकेगा, जिसकी बाहर अटैचमेंट्स हैं दुनिया की, इंद्रियों के भोगरस हैं या अटैचमेंट है मोह है कुछ है, वो इनसे ऊपर कैसे जाता। कई अभ्यासी भी जरूर इनके छुट्टे घबराते हो मौत ना जा तो नीचे उतरा, अरे मौत नहीं बच्चा एक दीवार के ऊपर खड़ा हो, पिता नीचे खड़ा हो छलांग मार दे पिता उसको कभी गिरने देता। जो पावर बाहर तुमको जीते जी तुमसे ऊपर ला सकती है, आगे तुम्हारी इंतजार करती है, तुम्हें जन्म नहीं लेगी संभालेगी। इस रस्ते में कौन जा सकती है जो सब कुछ हवाले करके जाएगी आगे, दूसरे लोग नहीं जा सकते। जितना हवाले कर सके उतना जल्दी जाओ, बच्चे जल्दी हवाला कर सकते हैं इसलिए उनको जल्दी आ जाते। जितना सेना जितना बहुत चातर जितना स्क्रीनिंग जितना बाहरी अटैचमेंट में है उसलिए मुझको वो दुनिया से जकड़ा पड़ा है, फिर वो आगे कैसे जाए। एक कांटे वाली झाड़ी हो इस बात को समझो, उस पर रेशमी कपड़ा पड़ा हो, मैंने मिसाल फरमाया करते थे, अगर यकलस खेचो तो कपड़ा फट जाता, अगर थोड़ा थोड़ा उतारना सीख जाओ, पहले हो सकता है 2 घंटे में उतारो फिर घंटे में तो 15 मिनटों फिर मिनटों में उतार। भाई ये है चीज वो जो देते, जीते जी मरना सिखलाते हैं, उसका नतीजा क्या होता है, दास के बीरा यू हुआ बाहर न मरना होता। जो अटैचमेंट से हट गया कहां जाएगा, बाहर की आशा ही हमें दुनिया में बार बार लाती है, जहां असर था वासा। इसलिए कहा संतन को क्या रोइए जो अपने ग्रह जाए, रोवो साकत बापड़े जो हाथों हाथ बताओ। संतों को क्यों रहो, वो तो अपने घर जाते हैं रोज जाते हैं। मैंने अभी मौलाना रूम का किस्सा सुनाया, वो कहता है भाई ये तो जिस मैं रस्ते में आयल था ये हमेशा के लिए टूटने वाला है, तुम नहीं चाहते कि मैं हमेशा उसकी गोद में चले। ऐसे पुरुषों की संगति ही में हम ये रास्ते जिंदगी सीख सकते हैं। तो इसलिए क्राइस्ट ने कहा आई शैल नेवर लीव दी नॉर्थ फॉरसेकी टिल दी एंड ऑफ द वर्ल्ड, मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा, दुनिया की आखिर तक यही गुरु का नाम देता है, साथ हो बैठता है, उस वक्त तक नहीं छोड़ता जब तक उसको सतनाम की गोद में न पहुंचा। ऐसे समर्थ पुरुष का मिलना बहादुरों से होता, और हमेशा यही तालीम देते हैं क्या भाई जीते जी मरना भला है, जीवत में मरना भला, जे को मर जाने को अगर तू मरना जान जाए जीते जी वो भला है, उसका नतीजा क्या होगा, मरने से पहले जो मरे अजर अमर हो, उसको मौत का क्या खौफ है, रोज जाता है गुरुमुख आवे जाए जिसने। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, गुरमुख सो कर दोस्ती, सतगुर सो लाए चित। जो गुरुमुख है उसके साथ सोबत करो, संगति करो। गुरुमुख किसको कहते हैं? जो गुरु से की सन्मुख हो, जिसने जीते जाग के ऐसी हस्ती की आंखें तो चार हुई उसकी आंखें। सतगुर देखा दीक्षा लीनी, गत मित पाई अंतर्गति। जिसको कभी आंख बार देखा नहीं वो गुरुमुख कहते हैं। पहली बात तो गुरुमुख जिसका मुंह हमेशा गुरु की तरफ है, ऐसी हस्ती की तरफ है, डिवोटेड है, हार्ट एंड सोल, जो इस समरथा का मालिक है, गॉड इन मैन है, मैन इन गॉड इन गॉड इन मैन। अरे ऐसे पुरुष की संगत करो, हमेशा क्या नतीजा होगा? वो उसकी महिमा गाएगा तुमको। सदगुर रहा सदगुर सो लाए चित, जो सत्य उपस्थित कौन परमात्मा उस घटो उससे जोड़ेगा, उससे चित लगेगा। टूटे की शोभा तुमको तोड़ देगी, सुन सुन कर बैठ जाओगे। नतीजा क्या है? जीवन बर्बाद करना। गुरु मिलने पर भी हम मनमुख हो सकते हैं। गुरु अमरदास जी साहब ने तारीफ की है, से मनमुख जो शब्द न पछाड़े गुरु के भय की साथ। जिन्होंने शब्द परिपूर्ण परमात्मा का कांटेक्ट नहीं मिला, गुरु मिला भी है मगर को हाजर नाजर, उसको समर्थ पुरुष नहीं जानता, उसे त्रुटियां फाइंड आउट करता रहा। ऐसा उसे मन मुख नहीं तो क्या? गुरु के भय की सार न जाने। तो गुरुमुख गुरु भक्त, भक्ति नाम है प्यार का। जिससे प्यार उसका कहना मानना चाहिए कि नहीं? क्राइस्ट ने कहा इफ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स, अगर मुझसे प्यार करते तो मेरे कहना मानो। फिर जहां लगन लग जाए वहां तो तन मन धन सब दीन ईमान बह जाता है। फिर एक और बात है, गुरुमुख की सोबत में गुरु याद आता, मनमुख की सोबत में दुनिया मन के भोग रस दुनिया याद आती है। जैसी सोबत वैसा रंग, अगर ऐसी सोबत न मिले तो एकांत रहो। अगर ऐसी हस्ती हजारों मीलों पर भी है, गुरु अमरदास जी साहब कहते हैं, कबीर साहब, कि गुरु सात समुद्रों के पार रहता हो, शिष्य पर रहता हो, दीनी सुर पठाओ, डायरेक्ट करो। सुर की रफ्तार बड़ी तेज है, रेडियो अगर हजारों मीलों से हमें आवाज सुना सकता है, टेलीविजन हमें शक्ल भी दिखा सकता है कौन बोलता है। अरे भाई जो गॉड इन मैन है वो हजारों मीलों से रेडिएशन से काम नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता? तो कहते हैं गुरुमुख की सोबत करो, गुरुमुख सो लाए दोस्ती, सतगुर सो लाए चित, वो सत प्रभु से प्यार आपका बढ़ाएगा। जन्म मन का मूल कुटिया, जन्म मन खत्म हो जाए, कहां जाओगे? जिधर हो जाए। अगर वो जन्म मन में नहीं, जन्म मन दो में नहीं, जन पर उपकारी आए, जी अदा दे भक्ति लाए हर प्रणाम, लाइफ इम्पल्स देते हैं, अपनी जिंदगी का हिस्सा तुमको देते हैं, जीवन राव देते हैं, तो इसका नतीजा क्या है? आना जाना खत्म। तो उनके अंदर वो ब्रेड ऑफ लाइफ है। सारे महापुरुष पेश करते हैं वाटर ऑफ लाइफ है, वो लोगों को देखकर अमर जीवन देते। वो कौन होते हैं महापुरुष? पहले तो एज ए सन ऑफ मैन जिक्र करते हैं, उसे थर्ड पर्सन में बोलते रहते, हाँ थोड़ा थोड़ा फिर इशारा देते हैं कि मैं भाई जिंदगी की रोटी हूं, ये सतलोक सत्संग से आई है, जो इसको खाएगा पिएगा हमेशा के जीवन को पा जाएगा। तो मैं अर्ज कर रहा था जन्म मर का मुंह काटने के लिए किसी अनुभवी पुरुष वो ब्रेड ऑफ लाइफ कैसे देता है, हमें जीते जी पृथ्वी ऊपर लाकर वो परिपूर्ण परमात्मा जो ज्योति स्वरूप जिसके अंतर अखंड की धुनि हो रही है, सस कीर्तन हो रहा है, लाइट एंड साउंड प्रिंसिपल है, उसका खुराक देता पानी, उसको हासिल करके ये हमारी जीवन की जिंदगी की रोटी है, उसे हमारे हमेशा के लिए पा सकते। तो गुरु अमरदास ठाकुर क्या फरमाते हैं, नानक ऐसी मरनी जो मेरे ना सद जीवन हो, एवर लास्टिंग लाइफ, किसी महापुरुष की बात नहीं रहो, यही तुमको देता है, यही गुरु की निकल। और जिन्हें महापुरुष आए इसी बात का उपदेश देते रहे, दादू पहले मर रहो पाछे मरे सबको, पहले मरना सीखो पीछे तो सारा जहान मरता हूं। हजरत मोहम्मद साहब से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा भाई मावतू केवलंत मावतू मर पे की तू मरे। तो जो दूसरा था ना आदमी वो कहने का है कहीं मैं मर जाऊं, उन्होंने कहा बेमीरा दोस्त अगर तू मरना सीख, अगर मैं जिंदगी खाई अगर तू हमेशा का जीवन चाहता है तो जीते जी मर। तो सवाल करने वाला कहता है कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा, कब्र में तो नहीं पहुंचा दिया जाऊंगा। कहते नहीं ई न मर गए यहां के दर गोरे रवि, या कि मौत नहीं जो तुमको कब्र में या शमशान में पहुंचाए, बल्कि अर जुलमत बसुए नूरे रवि, अब अंधेरा है ना आंखें तो नूर की तरफ ले। तो इसलिए ताकीद करते हैं क्या करो, बड़ी हमदर्दी से कहते हैं कि जीते जी जाकर मर, कब दे मर सकेगा, जहां बजाना दे वे जाने खुद भी रखता है, चांद उसके हवाले कर दे जिस जिसमानी उसका ख्याल छोड़। फिर क्या कहते हैं तान मेरी, जब तक तू मरना नहीं सीखता सूद का खाई रबू, इस मूर्ख जीव से कैसा फायदा उठा सके। इसलिए क्या कारण राव बमीर मेरा बदला रहा, जो मूर्ख जीव भागों से मिला जाए इससे फायदा उठा, जीते जी मरने के बाद मिला। सारे महापुरुषों ने इस बात की तालीम दी, सब सब रही साहब कहते हैं दामने होगी राय यारे दरे, आय बहादुर पुरुष किसी ऐसे के दामन को पकड़ को मुनजा बाशद बाला दे, जो इस दुनिया और अगली दुनिया दोनों का हुआ तो हो यहां भी दे और आगे भी साथ आ जाए। मैंने सुबह भी अर्थ किया था बाय लेक्चर दे देना, बाय नहीं बनावट बनाना, चेन चक्रों का दिखाना, रस्म रिवाज का करना कराना, ये लेक्चर देना कोई भाई थोड़ी ट्रेनिंग के बाद कर सकता। अरे भाई जीते जी पिंड से ऊपर लाना, इंद्र के घाट के ऊपर अंतर की आंख खोलना, थोड़ी पूंजी का देना, चुंगा देना खराने के लिए, बाकी खरीद ले, खरीदना पहले पे कुछ नहीं करना पड़ता, पे इतना ही करना है कि बाहर से हटना, ऐसी चीज का जो साथ नहीं जाती, क्यों भाई किसी के साथ कोई चीज गई, लाखों वाले भी यहां लाखों छोड़ जाते हैं, कखों वाले कब छोड़ जाते हैं। अगर किसी यही तो महापुरुष हमको जोरदार लफ्जों में यही कहते, अरे भाई कुछ अपना काम करो, काम अपने चलो भाई पराये देश क्यों रहना, काम अपना करो जाई पराये काज क्यों फंसो, फंसो नहीं करना नहीं करने का कुछ और होता, कर्म के बगैर तुम रह नहीं सकते, पर फंसो नहीं गुजारे मात्र बढ़ते माए, नमय गोयम की दुनिया जुदा बाश बाहर कार्य की बाशी बाखुदा बाश, तुमको ये नहीं कहा करो मगर उसको न भूल, परमेश्वर से पुण्य व्यापक सबे रोग बेमुख होए राम से लगन जन करो। बात समझे, ये महापुरुष तालीम देते रहे देते हैं, क्या सचमुच हम मर सकते हैं जी। सही पाल से पूछा गया, कहते हैं आई डाई डेली मैं रोज मरता हूं भाई मैं रोज मरता हूं, महापुरुष रोज जिस्म को छोड़ते और हमें जिस्म को छोड़ना सिखलाते हैं, हम बैठते नहीं। ये असल तालीम है जो वो देते हैं। जब अगर जीते जी हम पिल को छोड़ना सीख जाएं, अंदर वही जो बार उपदेशता अंतर भी उसी में आकर रेजिंग फॉर्म ऑफ द मास्टर गुरुदेव प्रकट हो जाए। अनपेड काउंसलर उपदेश देते हुए पहले दिन ही कईयों को शुरू पा जाए, समझे, कईयों को उपदेश लेने से पहले नहीं पता तो भी, क्योंकि पिछले दिन नहीं कहे ना, तो भी आ जाता है गाइड करने। मैं आपको अर्ज करूं, मैं बड़ा डरता था गुरु से माफ करना, और मेरे ख्याल हर कोई डरता हो अभी। मैं ये डरता था कि बानी पढ़ो तो जगह जगह का जाओ महात्मा के पास जाओ।
एक बात मालूम होती है, मुझको हमें बड़ा उपयोग पसंद है, बस चले उससे कई चीजें बता दिए, कुछ की कमी आ जाए। हमारी सोच का फायदा उठाओ, इंसान का जाना बड़े भाग होता है। हमको मिला है अब तक हम कहां पहुंचे हैं, ऐसे महापुरुष मेरे भी है, हम कहां पहुंचे। ये आपका अपना काम है, अपना वेरी प्राइवेट, मोस्ट प्राइवेट वन, इट इज यू हू हैव टू लीड द बॉडी, नो बडी हैज टू गेट देयर, एंड इट इज यू हू हैव टू स्टैंड अप, नो पावर कैन टू डू दिस, यू हैव टू ऑल लेफ्ट द बॉडी एंड आवर टर्न इज डन। तो महापुरुष आपको कहते रहते हैं, बाबा जागर सिंह को कहते, देखो भाई अब थोड़ा वक्त लग जाएगा, अनेक कमाते हैं कहीं और कुछ कम है। और बीमारे जो खास बात थी, मेरा फोटो पता, जो बात तुम जो कहो आप उसी कर लेंगे,